कोंडीपुर में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार भक्ति विदान स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जी की कृपा से गिरिराज मंदिर के प्रांगण में भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी और सुदर्शन चक्र के शरण में विठल रुक्मणी मंदिर जो यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है, वरदायनी नदी के तट के ऊपर माता रुक्मणी का प्रकट्य स्थल और बाल क्रीड़ा स्थल और कृष्ण प्रेम प्रकट्य स्थल में लक्ष्मी रूपा साक्षात रुक्मणी के चरण के आश्रित होकर और अंबिका देवी के क्षेत्र में गुप्त परिवार श्रीमान ब्रजमोहन जी गुप्ता, श्री लक्ष्मीकांत जी गुप्ता, उषा देवी गुप्ता और उनके सुपुत्र अनुराग और परिवार ने सात दिवसीय नव वर्ष के आगमन में श्रीधाम कुंडीपुर में श्रीमद् भागवत के सत्संग का आयोजन किया है। और हमारे इस्कान मंदिर के श्रीमान अक्रूर दास और उनके सारे भक्तगण, उनके सुपुत्र युगधर्म आदि सब ने मिलकर बहुत अच्छा व्यवस्था और सुंदर दिव्य वातावरण आप और हम सब के लिए कथा कर आस्वादन करने के लिए बनाया है। इन सब का हम आप सबके आने का और श्रीमान परमेश्वर जी भक्तों को लेकर पधारे हैं उन सब का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और गुप्ता परिवार और इस्कान कोंडीपुर का आभार और धन्यवाद प्रकट करके भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। ये मंदिर श्री प्रभुपाद जी ने बनाए ही हरि कथा और हरि कीर्तन के लिए हैं। तो आज पांचवें दिन की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कल हमने प्रहलाद महाराज अपनी माँ कयादु के अभी तक उदर में थे, पेट में थे और नारद जी से उपदेश सुन रहे थे। हिरण्याकशिपु तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर लेकर वापस आ चुके थे और चारों ओर धर्म के ऊपर चलने वालों के लिए संकट पैदा किया, गौ की सेवा को बंद करा दिया, यज्ञ को बंद करा दिया, ब्राह्मणों के पाठ को बंद करा दिया, हरिनाम संकीर्तन को बंद करा दिया। सब जगह हाहाकार मच गई, देवता परेशान हो गए। भगवान श्री नारायण से कहा, हे विष्णु आप पालक हैं और इस वक्त हिरण्याकश्यप ने बहुत बड़ा अत्याचार मचाया है। भगवान ने कहा मैं जानता हूं, लेकिन जब उनके भक्त पुत्र बालक प्रहलाद के ऊपर अत्याचार करेगा तब उसको मरा हुआ समझना। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कोई अपने पुत्र के ऊपर अत्याचार कैसे करता है, पुत्र तो सबको प्रिय होता है। तो फिर प्रहलाद की कथा, गुरु उनके अपने गुरु नारद ऋषि प्रहलाद की महिमा सुना रहे हैं। प्रहलाद को पढ़ने के लिए छंड और अमर शुक्र आचार्य के पुत्रों के पास भेजा गया। वहां से घर में पिता ने पूछा कि क्या सिखाए, बोला विष्णु की भक्ति करना सीखना। और ये, अरे तुमको किसने विष्णु की भक्ति सिखाया, मेरी सब भक्ति करते हैं, ऐसे हिरण्याकश्यप ने जब कहा। तो प्रहलाद ने कहा भक्तों का जब तक संग और सत्संग और कृपा नहीं होती है तब तक कोई भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। तो भगवान की भक्ति कब होती है, जब भक्तों का संग होता है। और भक्तों के संग में क्या होता है, भगवान की कथा होती है, तभी भक्ति का जन्म होता है। दोबारा प्रहलाद जी वापस आए और हिरण्याकश्यप ने पूछा क्या सीखा, बोला श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्म निवेदनम। अरे विष्णु की भक्ति की बात कर रहा है, इसको मार दो, हमारे शत्रु के पक्ष में हो गया। प्रहलाद को मारने के लाख उपाय किए गए, पर्वत से नीचे फेंका, चोटी से, हाथी के पांव के नीचे कुचलने के लिए रखा, आग में जलाने के लिए रखा, समुद्र में डुबाने के लिए डाला, विष पिलाया, लेकिन जिसको राखे राम उसको कौन चाके भगवान, जिसका रक्षक है उसको कौन मार सकता है। बड़ा विचलित हो गया हिरण्याकश्यप, मरता नहीं है। छंडोर अमरक ने कहा आप चिंता मत करो महाराज, हमको दे दीजिए, हमारा पिता आएगा इनको सिखाएगा, ये वापस आश्रम में ले गए और पूछा कि तुमको सिखाया किसने, हमने तो तुमको सिखाया नहीं। तो छंड और अमर को भी प्रहलाद ने नहीं बताया कि मैं कहां से सीख के आया हूं। छंड और अमक प्रसाद खाने गए और ये अपनी पाठशाला के बच्चों को उपदेश दे रहे हैं। प्रहलाद महाराज के उपदेश का पहला श्लोक श्रवण कीजिए। ये श्लोक प्रभुपाद जी महाराज सदा बोलते थे। श्री प्रहलाद वाच, ये प्रहलाद महाराज के शब्द है। कौमारमाचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अधुर्वम अर्थदम। प्रहलाद महाराज कहते हैं बचपन से ही 5 वर्ष की आयु से भागवत धर्म का पालन करो, भगवान का नाम जपना शुरू करो। ये मानव जन्म थोड़े समय के लिए मिला है लेकिन ये बड़ा लाभ देने वाला है। बचपन से अगर भगवान की भक्ति शुरू नहीं की तो बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करना, दर्शन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये भागवत धर्म वो है जो भगवान ने दिया है, जो भगवान के भक्तों के संग से प्राप्त होता है। ये बचपन से भक्ति करनी चाहिए। इसलिए भारतवर्ष में गुरुकुल हुआ करते थे। 5 वर्ष का बच्चा गुरु के आश्रम में जाकर भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण करता था। 7,000 जब अंग्रेज यहां शासन करने आया तो भारतवर्ष में 7,000 गुरुकुल थी। कोई पैसा पढ़ाने का नहीं लिया जाता था। 18 विषय पढ़ाए जाते थे। अंग्रेज ने कहा भारत के ऊपर हमारे को शासन करना है, राज करना है, तो इनकी पढ़ाई की पद्धति को बदलना पड़ेगा। गुरुकुल को बदल के अंग्रेजी कॉन्वेंट की पढ़ाई शुरू करेंगे तो फिर ये अपने धर्म को नहीं जान पाएंगे, तब ये हमारे नौकर बन जाएंगे। और मेकाले ने अपने पिताजी को चिट्ठी लिखी थी कि हमने गुरुकुल में मिलने वाले राजाओं के दान को अवैध करके बंद करा दिया, पढ़ाने वाले पंडितों को भगा दिया और भारत के अंदर से गुरुकुल पद्धति को जड़ से उखाड़ दिया। जैसे खेत में बीज डालने से पहले खेत को साफ करते हैं, ऐसे हमने साफ कर दिया। अब हमने अंग्रेजी का बोझ बीज बोने डाल जा रहे हैं। देखने में भारतीय होंगे लेकिन अंदर से अंग्रेज होंगे, हमारे नौकर होंगे, हमारी सेवा करेंगे, अपने देश के ऊपर, अपने समाज के ऊपर, अपने धर्म के ऊपर, अपने संस्कृति के ऊपर गौरव नहीं करेंगे और पाश्चात्य लोगों की चीजों को ही उच्च कहेंगे। और ये आज तक हो रहा है। अंग्रेज गए को 50 साल से ऊपर गए लेकिन आज तक हम यही कर रहे हैं। तो ये प्रहलाद महाराज की शिक्षा। इसलिए हम कहते हैं जैसे बच्चों को टीके लगाना जरूरी है, छोटे बच्चों को अभी जाते हैं ना, माँ बच्चे को उठा के जाती है कि इसको पोलियो के ड्रॉप पिलाओ पिलाओ, इसको खांसी का, खसरे का, टीबी का टीका लगाओ। हम जब स्कूल में पढ़ते थे टीका लगाने वाला था, हम भाग जाते थे कि टीका लगाने वाला जो सुई लगा रहा है। लेकिन अब हम अपने आप बच्चे को उठा के ले जा रहे हैं टीका लगाने। क्यों लगाने जाते हैं? कि बच्चे की टांग टेढ़ी ना हो, बच्चे को बीमारी ना हो। ऐसे बचपन से बच्चों को गीता का पाठ कराना, राम नाम जपाना टीके लगाने के बराबर है। उसका दिमाग नहीं बिगड़ेगा, वो माता पिता की अनादर नहीं करेगा, वो समाज के अंदर अच्छा आदमी बनेगा अगर उसको बचपन से धर्म की शिक्षा दोगे। ये टीका लगाना नहीं शुरू किया तो आज देख लीजिए घर घर में कोई बच्चा माता पिता के चरण छूने वाला नहीं है, माता पिता की सेवा करने वाला नहीं है। इतने सारे बूढ़े आश्रम खुले हुए हैं और बड़े बूढ़े माता पिता जिन्होंने कमा के घर बनाया, बच्चों को पढ़ाया, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है क्योंकि संस्कृति का सत्यानाश हो गया। तो प्रहलाद महाराज यहां अद्भुत शिक्षा दे रहे हैं अपने सहपाठियों को और वो कहते हैं ये हमारे गुरु ने सिखाया नहीं, आप कहां से सीख के आए? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं हमारा गुरु नारद है, भगवान नारायण का शिष्य। मैं अपनी माँ के गर्भ में था तब मेरी माँ को उसने उपदेश दिया था और मैंने सीखा है। हरणाकश को नहीं बताया कहां से सीख के आया, छंड और अमर को नहीं बताया लेकिन बच्चों को सच बता दिया। ये भगवद गीता का श्लोक है। जब अश्रद्धालु लोग हैं उनको भगवान की भक्ति के बारे में कहेंगे तो भगवान का अपराध करेंगे। पहले ही नहीं मानते हैं और आप भगवान की बात करेंगे तो भगवान को बुरा भला कह के और अपराध का भागी बनेंगे। इसको उनको इसके लिए उनको बताना नहीं चाहिए लेकिन श्रद्धालु बच्चा हो तो उसको बता देना चाहिए। अब जब ये सब बच्चों को उपदेश दिया तो सारे बच्चे प्रहलाद के साथ ऊपर करके बोल रहे हैं हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अब इतना आवाज आने लगा हरे कृष्ण महामंत्र का, गोविंद गोपाल नारायण का। शंड और अमर भोजन करते हुए परेशान हो गए कि पहले एक लड़का था, अब पूरी स्कूल बिगड़ गई। अरे बिगड़ क्या गई, सुधर गई। हम भी बड़े बुद्धिमान हैं, किसी दूसरे का बेटा साधु बनता है, हमारे घर में आता है तो चरण छूते हैं, आसन देते हैं, भोजन कराते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। कहते महाराज आप अच्छा हो, और अपना बेटा भक्त बनता है तो कहते लड़का तुम बिगड़ गया। पराये का साधु बने तो बड़ा अच्छा लगता है, और अपना साधु बने तो कहेंगे बिगड़ गया। अरे बिगड़ तो वो गया जो शराब पीता है, बिगड़ तो वो गया जो नशा करता है, सिगरेट पीता है, बिगड़ तो वो गया जो सब नशे छोड़ के भगवान की भक्ति कर रहा है, वो बिगड़ गया कि सुधर गया। ये संसार भी ऐसा है, रंगी को नारंगी कहे, इतना सुंदर रंग है कहेगा इसका कोई रंग नहीं है, नारंगी नारंगी है ना। रंगी को नारंगी कहे, चलती को गाड़ी, जो चल रही है उसको बड़ा गड़ गई है, अरे गड़ कहां गई है, चल रही है ना। दूध को खोया कहे, अरे वो दूध का इतना मावा बन गया, बोला खोया खराब हो गया। ये देखकर संत रोया कि दुनिया सारी उल्टी हो रही है, इतनी सुंदर रंग है नारंगी का, रंग कितना अच्छा है। हाँ कहते हैं नारंगी इसका कोई रंग नहीं। तो इस दुनिया में बदमाश कोई ऑफिसर आ जाए, रिश्वत ले, काम करे, बोले अच्छा ऑफिसर है, पैसा दो काम करो। और कोई शरीफ आ जाए, ईमानदार आ जाए, सबसे नेम पे चला रहे, मुसीबत आ गया, काम कोई करता नहीं है, पैसा लेता नहीं। तो अच्छे आदमी को बुरा, बुरे आदमी को अच्छा कहना, ये जिसको शिक्षा नहीं है शास्त्र की, वो ऐसा समाज होता है। और गीता में कहा है ये तमोगुण के लोग हैं, जो बुरे को अच्छा और अच्छे को बुरा समझते हैं, ये गुण बहुत नीचे का गुण है। तो प्रहलाद महाराज के इस प्रवचन से सब भक्त बन गए, तो शंड और अमर डर गए, बिरह प्रहलाद को पकड़ के लाए, बोला महाराज पहले एक बिगड़ा था, पूरा क्लास बिगड़ गया, अब सारा स्कूल गुरुकुल गुरुकुल बिगड़ गया। हिरण्यकशिपु कहता है तुम्हारी शक्ति आती कहां से है, बोला पिताजी जहां से आपकी आती है, जहां से सबकी आती है। अरे तुम्हारा विष्णु कहां है, अरे कहां नहीं है, सब जगह है, कण कण में है। तो क्या इस खंभे में है, उस सभा के खंभे के ऊपर ऐसे उंगली उठाई हिरण्यकशिपु ने। भगवान सावधान हो गए कि मेरा भक्त है, मेरे को सब जगह देखता है, वो विश्वास से कह देगा खंभे में है, और भक्त ने जहां कह दिया वहां से मेरे को निकलना पड़ेगा, क्योंकि भक्त की बात को तो मैं कभी झूठा करता नहीं हूं, अपने वचन को तोड़ देता हूं, भक्त के वचन को नहीं छोड़ता हूं। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम, अपने भक्त के वचन को सत्य करता हूं, ये मेरा वचन है। प्रहलाद ने कहा हाँ इस खंभे में क्यों नहीं, सब जगह है तो खंभे में भी है। बहुत से लोग मूर्ख है, कहते हैं भगवान सब जगह है, मंदिर में क्यों जाते हो। अरे सब जगह है क्या, मंदिर सब जगह से बाहर है क्या, जब सब जगह है तो मंदिर में नहीं है क्या, जब सब जगह है तो मंदिर में है ना। तो हम उनसे पूछते हैं पानी धरती में सब जगह है कि नहीं, धरती के नीचे पानी सब जगह है कि नहीं। आपको प्यास लगेगी तो क्या करोगे, कुआं खोदोगे, नलका लगाओगे, क्या करोगे, जहां पानी चलता हुआ है वहां जाके पियोगे ना। तो भगवान सब जगह है, लेकिन मंदिर में कुआं खोदा है, नलका बनाया हुआ है, जाओ पियो, देखो, दर्शन करो, लेकिन सब जगह है पानी, सब जगह धरती में दिखता है क्या। जब कुआं खोदोगे, जब नलका लगाओगे, बोरिंग करोगे, तब निकलेगा ना। लेकिन यहां तो पहले से बना के रखा है आपके लिए, प्यास बुझानी है तो नलके के पास जाना पड़ेगा, कुआं थोड़ी खोदेंगे, अभी प्यास लगी और अभी कुआं खोदो, ऐसे कभी किया है क्या। तो भगवान सर्वत्र है, और कहा कि इस खंभे में है। प्रहलाद ने कहा जी हाँ सब जगह है तो खंभे में भी है। और उस वक्त हिरण्यकश्यप का देखता हूं मैं कहां है तुम्हारा भगवान, खंभे को मुक्का मारा, खंभे के अंदर से नरसिंह देव भगवान की। भगवान ऊपर का शरीर शेर जैसा, नीचे का हिस्सा मानव जैसा, बहुत बड़ी ऐसे सुनहरी बालों की दाढ़ी और ऐसे शेर के बाल, और शेर की तरह धारते हुए अंदर से निकले। हिरण्यकशिपु कहता है ये विष्णु है, उसका रूप है, और उसके साथ भिड़ गया। भगवान भी खेल रहे थे उसके साथ, जैसे सांप के साथ गरुड़ खेलता है। जब शाम का समय हुआ, ना दिन है ना रात है, जब ना अंदर है ना बाहर है, ना आदमी है ना देवता है, ना अस्त्र है ना शस्त्र है, हिरण्यकशिपु को नरसिंह देव ने अपने गोद में बिठाया। जमीन पे नहीं, ऊपर नहीं, अंदर नहीं, बाहर नहीं, बिल्कुल बीच में चौकट पे बैठ गए। अस्त्र शस्त्र से नहीं, नाखून से उसका पेट चीर दिया और उनकी अंतड़ियां निकाल के गले में डाल दी। हाहाकार मच गया, हिरण्यकश मारा गया, हिरण्यकश का उद्धार हो गया। भगवान ने हिरण्यकश को नीचे पटक दिया। भगवान क्रोध में बैठे हैं, ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए, चंद्र आए, इंद्र आए, नारद आए, ये सब ऋषि आए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे। भगवान शंकर जी कहते हैं प्रलय करना मेरा काम है, हिरण्यकश ने यहाँ प्रलय शुरू कर दी थी। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे वचन के कारण ये अजय हो गया था। भगवान ने कहा ऐसा वचन किसी को मत दिया करो कि मेरे को आधा इंसान और आधा शेर बनना पड़े, जरा सोच समझ के वचन दिया करो जरा ब्रह्मा जी। नारद जी ने कहा हमको कहता था कि हमारे गुणगान करो, भगवान का गुणगान मत करो। और नरसिंहादेव क्रोधित होने लगे। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी को कहा आपके पति देव को शांत करो। लक्ष्मी साड़ी को ठीक करके आगे बढ़ी, लेकिन हिरण्यकशिपु के बड़े बड़े नाखून देख के कहा नहीं, आज पति देव का तेवर अच्छे नहीं, आज मैं नजदीक नहीं जाऊंगी। अब प्रहलाद महाराज को प्रार्थना की कि आपके लिए अवतार लिया है, आप ही जाके शांत कीजिए। प्रहलाद ने प्रणाम किया, हिरण्यकशिपु ने उसको उठाया, गोद में बिठाया और जबान से चाटने लगे और कहा क्षमस्व मां, मुझे क्षमा करो बेटा, तो मेरे आने में देर हो गई, तुम्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ा। इसको कहते हैं भक्ति करे तो प्रहलाद जैसी, कितना भी संकट आए, कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे परिवार वाले संकट पैदा करें या पिता ही रास्ता बंद करें, लेकिन भगवान की भक्ति से एक सेंटीमीटर भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, एक सूत भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। ऐसी अटल विश्वास वाली भक्ति के लिए भगवान प्रकट हो गए। प्रहलाद महाराज ने कहा हम नीच जाति के, हम असुर, आपने कितनी कृपा की है हमारे ऊपर प्रकट हो। भगवान ने कहा वरदान मांग लो। बोला मैं धंधा करने वाला व्यापारी नहीं हूं, आपकी भक्ति करूं और उसके बदले में आपसे वरदान मांगू, ये तो दुकानदारी हो गई। मैं वणिक नहीं हूं, मैं दुकानदार नहीं हूं, अगर आपको वरदान देना है तो ये वरदान दो कि मैं कुछ मांगू नहीं आपसे, बस केवल आपकी सेवा करता हूं। प्रहलाद ने कहा संसार वालों सुनो, इतना ज्यादा प्रयास मत करो कि पैसा, तुम मेहनत करोगे तब कमाओगे, सुख तुम्हारी मेहनत से आएगा। अति प्रयास न कुरियात, इतना ज्यादा प्रयास मत करो, अरे फिर सुखी कैसे होंगे। बोला दुखी होने के लिए कोई प्रयास करता है क्या, कोई मंदिर में आज तक गया है भगवान को प्रार्थना करने कि मेरे चाचा की टांग टूट जाए, मामा को कैंसर हो जाए, दादा की खोपड़ी फट जाए, ऐसा कोई गया है क्या। लेकिन सबके घरों में बीमारी आती है कि नहीं आती। प्रहलाद महाराज कहते हैं जैसे बीमारी दुख तकलीफ तुम्हारे कर्मों का तुम्हारे दरवाजे के ऊपर बिना बुलाए आता है, ऐसे सुख भी जो तुमने पहले कमा के रखा है तेरे दरवाजे पे अपने आप आ जाएगा। अति प्रयास करके गधा मजूरी करने की जरूरत नहीं है। 8 घंटे आपको दिए हैं शरीर के लिए, सो जाओ, आराम करो, स्नान करो, खाओ, वस्त्र पहनो, 8 घंटे हैं। 8 घंटे आपको दिए हैं, कमाओ, नौकरी करो, मेहनत करो, मजदूरी करो, शरीर को पालो, परिवार को पालो। अरे 8 घंटे दिए हैं आपके अपने लिए, एक शरीर के लिए, एक शरीर और शरीर से उत्पन्न सर परिवार को पालने के लिए 24 घंटा, 12 घंटे तो आपको, 16 घंटे आपको दे दिए। अरे 8 घंटे आपके अपने लिए है, आप आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो। शरीर को आराम चाहिए था, शरीर को भोजन चाहिए था, लेकिन आत्मा के लिए समय जो रखा है भगवान ने वो कहाँ गया। वो समय कौन चुरा के आपका ले जा रहा है जो आपको शांति के लिए। हम कहते हैं लोगों के पास धन पहले से ज्यादा है, 50 साल पहले इतना धन नहीं था लोगों के पास, धन आज ज्यादा है और परिवार में संतान आज कम है। 50 साल पहले लोगों के पास 5-5 बच्चे थे, अब 1 बच्चा है। संतान कम है, धन ज्यादा है, ये सच है कि नहीं। आज तब बच्चे ज्यादा थे और सुख और शांति थी, घर में प्रेम था, अब धन ज्यादा है, बच्चे कम है, लेकिन घर में अशांति है कि नहीं है? पहले एक कमरा था घर का, फिर भी हम 10 आदमी सुखी रहते थे, अब 10 कमरे हैं, भूत बंगले की तरह कोई रहने वाला नहीं है, रहने वाला एक बच्चा है, वो भी बाहर पड़ रहा है, ये माता पिता है भूत की तरह इधर से उधर घूम रहे हैं। तो ये प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं हैं कि चबे को चबाओ, गने से जूस निकालने के बाद गने को चूसने से जूस निकलेगा क्या? नहीं ना। ऐसे इस संसार में चबे को चबा रहे, जो चबा है उसको चबा रहे। मैं बड़ा हो गया, मैंने पढ़ाई की, मैंने नौकरी की, फिर मैं रिटायर हुआ, मेरे बच्चों ने घर से निकाला, फिर मैं मन जाके आश्रम में रहा, फिर मैं मर गया। फिर अब तुम ऐसे करो, तुम भी पढ़ाई करो, तुम भी शादी करो, तुम भी नौकरी करो, फिर तुम्हारे बच्चे तुमको निकालेंगे, फिर तुम ही मरोगे। अरे भाई आखिर क्या करोगे? क्या यही चाल, यही चक्कर चलता रहेगा क्या? तो प्रहलाद महाराज नरसिंह देव ने कहा कि अब आप राज करो यहां बैठकर। तो प्रहलाद ने कहा फिर एक हमें आशीर्वाद दे दो। अरे अब क्यों मांग रहे हो? बोला अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, ये मेरा पिता आपसे बहुत द्वेष करता था, अब आप इसका उद्धार कर दो। भगवान कहते हैं प्रहलाद जिस कुल में एक भक्त हो जाता है ना, उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, माता की पीढ़ियां, पिता की पीढ़ियां, सबका उद्धार हो जाता है। तेरे एक पिता को नहीं, तेरी 21 पीढ़ियों को मैं कभी नहीं मारूंगा। और प्रहलाद महाराज ने फिर राज किया। और प्रहलाद महाराज एक बार अवधूत से मिले, और उस अवधूत दत्तात्रेय भगवान से मिले, कहा इतने मोटे तकड़े हो, कुछ करते नहीं हो, इतना सुख कैसे है? उसने कहा मैंने तो भगवान का शरण ले लिया है, जहां पड़ा होता हूं भगवान अपने आप खिलाता है। अरे हाथी को एक मण रोज खिला रहा है, चुंटी को एक कण रोज दे रहा है, न हाथी फैक्ट्री में जाता है, न चुंटी किसी की नौकरी करती है, जब दोनों को मिल रहा है तो क्या भगवान मुझको नहीं देगा क्या? और फिर यहाँ सातवें स्कंद में गृहस्थ आश्रम का बहुत सुंदर धर्म है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ये सब साधु महात्मा सुखी है, गृहस्थी कैसे सुखी हो? तो युधिष्ठिर महाराज के इस प्रश्न के ऊपर नारद जी कहते हैं गृहस्थ को भगवान वासुदेव की कथा को सुनना चाहिए, ये पहला गृहस्थियों का धर्म है। ये जो आप सुन रहे हैं भागवत कथा, ये गृहस्थियों का पहला धर्म है। दूसरा, इस कथा सुनने के लिए भक्तों का संग करना चाहिए, क्योंकि कथा संतों से सुननी चाहिए, साधु का संग करना चाहिए। और तीसरा कि आपके पास आवश्यकता से ज्यादा अगर धन राशि है तो भगवान की सेवा में, साधु संत की सेवा में, गरीब दुखी की सेवा में लगाना चाहिए। चौथा, ग्रस्त के लिए कहा कि समय निकालकर घर परिवार के काम से तीर्थ यात्रा करने जाना चाहिए। आज आप लोग यहाँ कौंडिन्यपुर तीर्थ में आए हैं, ये भी समय निकाल के आए हैं ना, ऐसे कभी वृंदावन जाना चाहिए, कभी जगन्नाथपुरी जाना चाहिए, कभी नवदीप मायापुर जाना चाहिए, कभी हरिद्वार जाना चाहिए, कभी द्वारका जाना चाहिए, कुछ समय निकाल के तीर्थ गृहस्थी को जरूर करना चाहिए, और घर में अतिथि का सम्मान करना चाहिए। और फिर एक छोटी सी कथा आती है, मैं दानव से असुरु ने तीन जहाज बनाए, तीन पुरियां बनाई, एक सोने की, एक चांदी की, एक प्लैटिनियम की, और आकाश से आक्रमण करने लगे। देवता परेशान हो गए, देवताओं ने भगवान शंकर को प्रार्थना की, शंकर जी एक पुरी को नाश करें, मारें और फिर वो जीवित हो जाएं। शंकर जी विचलित हो गए, भगवान समझ गया महादेव को परेशान कर रहे हैं, कारण क्या है? कारण ये है इन पुरियों के अंदर अमृत का कुआं है, जो मरता है उसको अमृत में डालते हैं, वो फिर जीवित हो जाता है। तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा को साथ लिया, नारायण ने गाय का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी बछड़ा बन गए, और जाके अमृत सारा पी लिया, कल पूरा अमृत का तालाब पी लिया। असुरु ने भी गाय को नहीं मारा, बोला गाय आई है इसको नहीं मारेंगे। जब अमृत का कुआं खत्म हो गया तो भगवान ने प्रकट होकर शंकर जी को धनुष और बाण दिया, काबिन तीन पुरियों के ऊपर आप आक्रमण करो धन। और शंकर जी ने धनुष से एक दो तीन पुरियों को ऐसे नीचे गिराया और शंकर जी का नाम हो गया त्रिपुरारी, शंकर भोलेनाथ की। त्रिपुरारी, त्रि मतलब तीन, पुरी अरी अरी मतलब शत्रु, तीन पुरियों का शत्रु, तीन पुरियों को समाप्त करने वाले। या सातवां स्कंद पूर्ण आहुति पे पहुंचता है। आठवें स्कंद में मनवंतर के अंतर्गत तीन कथाएं हैं। जब दुख हो, ताप हो, संताप हो, संकट हो, तो भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। चार अध्यायों में गजंतर मोक्ष की कथा है। फिर दूसरे प्रसंग में 10-11 अध्यायों में जब आपको भगवान सब उदारता से दे रहा है, तो बड़ी उदारता से सेवा में लगा देना चाहिए। वो समुद्र मंथन की कथा है। और तीसरा प्रसंग है, जब जीवन में कभी वचन करो, अपनी जबान से वचन दे दिया है, तो उस वचन को हर हाल में पूरा करना चाहिए। चाहे कोई धोखा करे, चाहे कोई आपसे बेईमानी करे, लेकिन अपने वचन से कभी फिरना नहीं चाहिए। बलि महाराज का चरित्र है। और एक अध्याय में मत्स्य अवतार का वर्णन है। तो आइए, पहले दुख हो, तकलीफ हो, संताप हो, तो भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान को हाथ जोड़ के बोलना, कहना चाहिए, हमारी, हम आपकी शरण में हैं, हम आपके हैं, हमारी रक्षा करो। गजेंद्र कौन था? गजेंद्र का मतलब हाथियों का राजा। गज कहते हैं हाथी को। हाथियों का राजा इंद्रद्युम्न नाम का महाराज था। दक्षिण भारत में इंद्रद्युम्न महाराज था। राजपाट छोड़ के तपस्या करने गए। अगस्त ऋषि के आने के ऊपर उठे नहीं, तो अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया कि महात्मा के आने के ऊपर उठता नहीं है, जड़ हाथी की तरह बैठा है, जाओ हाथी बन जाओ। तो उसकी भक्ति से भगवान नहीं मिला, लेकिन भोग बहुत बड़ा मिला। हाथी के शरीर में भी उसको बड़ी हथनियां मिली। स्वर्ग के वातावरण में स्नान कर रहा था एक सरोवर में, एक मगरमच्छ ने, एक ग्रह ने उसका पांव पकड़ लिया। परिवार वालों ने बड़ा प्रयास किया, कोई नहीं उसका सहायता कर सका। जल के अंदर रहने वाले मगरमच्छ का बल बढ़ने लगा और पृथ्वी के ऊपर रहने वाले हाथी कमजोर होने लगे। अब हाथी ने पूर्व जन्म की प्रार्थना से हाथ ऊपर करके कहा, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे नारायण, मैं आपकी शरण में हूं, आप रक्षा कीजिए। गो शब्द कहा, भगवान वैकुंठ में थे। विद कहा, उससे पहले गरुड़ के ऊपर चढ़ के आए। दोनों को तालाब पानी के से खींच के बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के से ग्रह का गर्दन काटा, मगरमच्छ को काटा, और मगरमच्छ के शरीर के अंदर से एक बहुत सुंदर देवता निकला और भगवान को प्रार्थना करने लगा। हाथी ने कहा, प्रार्थना मैंने की और भक्त सबसे पहले इसका मुक्ति हो गया। भगवान ने कहा, जो मेरे भक्त का पांव पकड़ता है उसको पहले मैं मुक्त कर देता हूं। आप मेरे भक्त हो, आपका पांव इसने पकड़ लिया। अरे, ये हु नाम का गंधर्व था। ये एक बहुत बड़ा सुंदर गंधर्व, बहुत सुंदर होते हैं, अच्छा गाते हैं, हमसे ऊपर के लोक में रहते हैं। एक बार देवल ऋषि नहा रहा था नदी में और इस गंधर्व ने नीचे से डुबकी लगा के उसके पांव को खींचने लगा, मजाक उसको सूझा। तो देवल ने कहा, अरे तू ऐसे कर रहा है, जा मगरमच्छ कर, मानव का शरीर, गंधर्व का शरीर क्यों खराब कर रहा है। वो गंधर्व बेचारा मगरमच्छ बन गया। कहा, महाराज मेरे ऊपर कृपा करो। बोला, ठीक है, जब तुम हाथी का पांव पकड़ोगे तब भगवान नारायण तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज ग्रह का उद्धार हुआ और फिर गज को भगवान ने कहा, अब तुम मेरे धाम चलो, तुम्हारी भक्ति परिपूर्ण होगी। मेरे दर्शन के बाद किसी को फिर दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ श्रुति फल लिखा है, जो गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनता है उनके भी सारे पाप नाश हो जाते हैं। ये हाथी और मगरमच्छ की कथा को सत्य समझ के अपने जीवन में देखो कि काल रूपी मगरमच्छ ने हमारे पांव को भी पकड़ के रखा है। मैं 60-70 साल मेरे को काल ने खा लिया। नौजवान को 20 साल कोई काल के मुंह में, कोई 25, जितनी उम्र है उतना काल ने आपने को दबा दिया, बाकी बाहर पड़ा है शरीर। काल रूपी मगरमच्छ ने हमारे हाथी जैसी विचार वालों को पकड़ के रखा है। जड़ की तरह हम केवल भोग में लगे हुए हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे। तो हाथी से ये सीखना चाहिए कि रोज प्रार्थना करनी चाहिए कि काल के गाल से हमें बचाओ, इस काल के गाल से बचने के लिए और कोई साधन नहीं, कोई नहीं बचा सकता है, ना राजा बचा सकता है, ना आपका धन बचा सकता है, ना आपके मित्र बचा सकते हैं, ना आपका कोई मंत्री बचा सकता है, भगवान के अलावा और कोई रक्षक नहीं है, कोई साथ नहीं जाता है, कोई नहीं बचाता है। इसलिए रोज भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद की कथा आती है, इंद्र हाथी के ऊपर चढ़ के बड़े शोभा यात्रा में जा रहा था। दुर्वासा ऋषि को अच्छा लगा कि इंद्र बड़ा अच्छा लग रहा है, एक माला इंद्र के गले में डाल दी। इंद्र ने उस माला को उतार के हाथी के गले में डाल दी, और हाथी को क्या पता माला महात्मा की कैसी होती है, उसने सूंड से पांव के नीचे घसीट दी। दुर्वासा ने कहा, माला का सम्मान नहीं किया, इंद्र तुम श्रीहीन हो जाओ। इंद्र का राजपाट डगमगाने लगा, असुरों को पता लग गया, इंद्र को बड़ा भय लगा, भगवान को जाके प्रार्थना की, अब क्या करूं, मुझसे अपराध हो गया, महात्मा की माला का सम्मान नहीं किया। भगवान की माला कोई भगवान को पहनाई हुई, हमको पहनाते हैं, ये सुबह माला पहनाई थी, अच्छे खासे धुले कपड़े, निशान लगता है, जाता नहीं है कपड़े का, ऐसे 10-15-20 कुर्ते हमारे पास पड़े होंगे, लेकिन माला को हम उतार के नीचे रखें ये हमारा नियम नहीं है। जब तक कथा है तब तक माला पड़ी, क्योंकि ये आशीर्वाद है, ये भगवान का निर्माल्य है, भगवान के वहां से प्रसाद आया है। अब संत महात्मा ने माला दी, वो हाथी के गले में डाल दी, तो उसका इंद्र का राज चुन गया। अब इंद्र ने भगवान को प्रार्थना की कि मैं क्या करूं, भगवान ने कहा ऐसा करो, इस वक्त दैत्यों का महाराज बलि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से शक्तिशाली है, धर्म के ऊपर चल रहा है, आप उसके साथ संधि कर लो, दोनों मिलकर समुद्र का मंथन करना, मैं आपकी सहायता करूंगा, अमृत आपको पिलाऊंगा, तब आप अमर हो जाओगे। और भगवान ने एक कहानी बड़ी अजीब बताई, अद्भुत कहानी बताई, का एक जाल में एक जैसी मछली की जाल होती है ना, धागे की जाल में सांप और चूहा दोनों फंस जाए, सांप चूहे को खाता है, अगर सांप चूहे को खा लेगा तो जाल से बाहर निकल नहीं पाएगा, तो सांप भी मर जाएगा, तो दोनों को संधि बना करनी चाहिए, सांप को कहना चाहिए चूहा मैं तेरे को खाऊंगा नहीं, तुम इस जाल में बिल बनाओ, तुम भी बाहर निकलो मैं भी बाहर निकलो, बाहर निकलने के बाद मेरा धर्म है चूहा खाना, तुम हाथ आ गया तो खाऊंगा, नहीं तो दूसरे को खाऊंगा, लेकिन पहले रास्ता तो बनाओ ना कम से कम, भाई सांप अपना बिल नहीं बना सकता है, मालूम है चूहा बिल बना के रखता है, सांप अंदर जाता है उसको खाता है और अंदर रहता है, तो चूहे और सांप में भी कभी कभी मित्रता करने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो जाल से निकल नहीं पाता है। आप अभी जाके असुरों से मित्रता कर लो, संधि कर लो। इंद्र ने जाके बलि महाराज को कहा, हम समुद्र का मंथन करेंगे, अमृत दोनों मिलके पिएंगे, उन्होंने भी हां कर ली। मंत्राचल पर्वत सोने का है, उसको उठाने गए तो दोनों से नहीं उठा, भगवान गरुड़ के ऊपर चढ़ के आए, पर्वत को लाए और खीर सागर में डाला, जामवत जी ने औषधियां डाली, वासुकी को रस्सी बनाया, मुंह की तरफ देवता खड़े हो गए, पूछ की तरफ देवता, बलि महाराज के लोगों ने कहा हम पूछ की तरफ नहीं खड़े होंगे, भगवान ने कहा जल्दी करो देवताओं, तुम पूछ की तरफ चले जाओ, भले इनको मुंह की तरफ रहने दो, जब तक अमृत नहीं मिले तब तक झगड़ा नहीं करना। दोनों ने खींचना शुरू किया, पर्वत नीचे धंसने लगा, भगवान ने कच्छप का अवतार ले लिया, बड़ा कच्छप बन गया, उसके ऊपर मंदराचल पर्वत रखा गया, अब नीचे भगवान ने मंदराचल पर्वत को आधार दे दिया, तो पर्वत ऊपर से हिलने लगा, भगवान ने हजार हाथों से ऊपर से पर्वत को पकड़ा, फिर मंथन किया, पसीना हुआ, सांप के मुंह से विष निकला, जो मुंह की तरफ थे वो काले हो गए, जैसे लकड़ी जली हुई है थे, लेकिन कुछ नहीं निकल रहा है। भगवान ने सत्वगुण के बल से देवताओं में प्रवेश किया, रजोगुण के बल से असुरों में प्रवेश किया, और अब जोर जोर से मंथन जब होने लगा तो अंदर से कालकूट विष निकला, हाहाकार मच गई, ये विष तो प्रलय जैसा सबको तबाह कर देगा, बोला सब देवता है एक महादेव नहीं है, महादेव को प्रार्थना करो, महादेव का आवाहन किया। महादेव ने पर्वत पार्वती से पूछा कि देवी, सब देवता दानव मानव सब संकट में है, विष निकला है, क्या करूं? अरे आप समर्थ हो, पर उपकार का काम है, जाओ आप पी लो। और शंकर जी ने आकर दोनों हाथ में विष को पकड़ लिया और थोड़ा सा उंगली से गिरा, वो विषीले जड़ी बूटियां हुए और सांप और बिच्छू के अंदर जो विष है वो वहां से थोड़ा सा बच गया, नीचे गिर गया। लेकिन शंकर जी ने कहा मुंह में रख नहीं सकता, क्योंकि जीभ के ऊपर तो राम नाम चलता रहता है, अंदर भगवान मेरे ध्यान में बैठता है, अंदर नहीं रखूंगा, कंठ में रख दिया। यहां कंठ में रख दिया, आज शंकर जी का नाम हो गया नीलकंठ महादेव की। कंठ में रख दिया और विष पिया, लेकिन पिया किसके लिए? परोपकार के लिए। तो महादेव सब देवताओं के लिए पूजन्य हो गए। राहु ने अमृत पिया लेकिन धोखा करके पिया तो क्रूर ग्रह बन गया। विष पी के भी महान हो गया शंकर, और अमृत पी के भी गर्दन कट गया, राहु और केतु दो हो गए। तो भले काम के लिए कष्ट उठाने में भी बड़ा नाम होता है, और अपने भोग के लिए अमृत पी के भी गला कटाना पड़ता है। अब इसके अंदर से 14 रत्न निकले, समुद्र मंथन से इसके बाद 14 रत्न निकले, उनमें 3 महान है। लक्ष्मी निकली जो सबका पालन पोषण करती है, सबका जीवन का निर्वाह करती है। लक्ष्मी ने स्वयंवर किया और भगवान विष्णु को वरण किया। कामधेनु गाय निकली, गाय अगर जीवन में आपसे जुड़ी हुई है तो गोपाल से आप जुड़े हुए हो, धरती से आप जुड़े हुए हो। गाय नहीं तो न गोपाल है न पृथ्वी से जुड़े हुए हो। और गाय ऋषियों को दे दी गई, क्योंकि इसी के दूध दही घी से यज्ञ होगा और तब भगवान और देव प्रसन्न होंगे, तब आपका सब जरूरत पूरी होगी। और तीसरा अमृत निकला। इसके अंदर से घोड़ा निकला उच्चेश्वरवा, वो बलि महाराज ने ले लिया। हाथी निकला ऐरावत इंद्र ने ले लिया। वरुणी निकली असुरों ने ले ली। अप्सराएं निकली देवताओं ने ले लिया। चंद्रमा निकला, तो ये सब चीजें समुद्र मंथन से निकली। अब अमृत का कलश लेके धन्वंतरी भगवान का अवतार निकला। कितने अवतार इस एक लीला में, कितने अवतार हैं? पहले तो भगवान ने मन्वंतर के अवतार भगवान ने प्रेरणा दी, फिर कच्छप अवतार लिया, फिर हजार हाथों से ऊपर से पकड़ा, फिर धन्वंतरी के रूप में अमृत को लेकर आए। अब कलश अमृत का देख के देवता कलश को लेकर भागे, असुर लेकर भागे। देवता कह रहे हमारा भी हिस्सा है, असुर भागे। तो भगवान ने कहा ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, असुरों ने अगर अमृत पिया तो अन्याय हो जाएगा। भगवान ने मोहिनी मूर्ति धारण कर लिया, एक सुंदर नागकन्या के रूप में आ गए। और मोहिनी मूर्ति रूप में असुर देख के कहते हैं आप सुंदरी कहां से पधारी हो, कौन हो आप, हमारे बीच में झगड़ा हो रहा है, हमारा अमृत बांट के पिलाओ। मोहिनी मूर्ति कहती है अकेली स्त्री वो भी जंगल में मिल जाए और स्वच्छंद घूमती है, उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। बोला हमको बड़ा अच्छा आपके ऊपर विश्वास है, आप बोलती हो तो हमारा मन मुलवा लेती हो, हमारे को आपके ऊपर बड़ा ठीक है। फिर देवता एक तरफ बैठे, असुर दूसरे तरफ, पहले स्नान करके आओ, काले हो गए हो, बैठ जाओ मैं दोनों को पिलाती हूँ। और मटका हाथ में लिया, देवताओं की तरफ देख के कहती है इनको थोड़ा पिलाने दो, आप असुरों को पूरा पिलाऊंगी, ये लालची है। ऐसे करके मोहिनी मूर्ति देवताओं को अमृत पिलाने लगी। असुरों से अन्याय हो रहा था, तो राहु वहां से उठ के जाके चंद्र और सूर्य के बीच में बैठकर देवता बन के बैठ गया। तो चंद्र और सूर्य दोनों ने कहा ये राहु है। भगवान तो पहचानते थे, अपने सुदर्शन चक्र को चलाया, उसने अमृत पी लिया था तो उसका गर्दन काटा, ऊपर का राहु हो गया, नीचे का केतु हो गया। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उनकी चुगली खाई, उनके ऊपर उंगली उठाई, इन दोनों के ऊपर आज भी ग्रहण लगता है, ये राहु ग्रहण के रूप में लगते। इसके बाद अमृत तो पिला दिया मोहिनी मूर्ति ने देवताओं को। असुरों ने बोला हमसे अन्याय हो गया, हमने भी मेहनत की, मेहनत उतनी है देवताओं ने की उतनी असुरों ने की, लेकिन असुरों को कुछ नहीं मिला और देवताओं को अमृत मिला। अब दोनों के बीच में बड़ा संग्राम हुआ। संग्राम में देवताओं के अंदर अमृत काम नहीं कर रहा है, क्योंकि भगवान जिसने अमृत पिलाया उसको धन्यवाद ही नहीं किया। एक बार एक भक्त चला गया भगवान के पास और भगवान को कहने लगा, आपके यहाँ लोक में क्या हो रहा है, मुझे घुमाओ। भगवान एक बड़े हाल में गए, दिखाया तो लाखों लोग काम कर रहे थे। बोला ये क्या है? बोला संसार वाले प्रार्थना करते हैं, कुछ मांगते हैं, जो मांगते हैं ये लिख रहे हैं किसने क्या मांगा है। दूसरे हाल में ले गए, दूसरे हाल में जाकर देखा तो लाखों लोग बैठे हुए हैं। अरे भगवान ये क्या कर रहे हैं? बोला जिसने जो मांगा है उनको भेज रहे हैं, जो जो जिसने प्रार्थना की है उसको वो चीजें भेजी जा रही। एक बड़े हाल में गए, तीन आदमी बैठे थे, वो भी मच्छर मार रहे थे, कोई काम नहीं था। बोला ये क्या है? बोला सबको चीजें भेजी है, वापस चिट्ठी किसी की नहीं आई, मिला कि नहीं मिला, धन्यवाद कोई नहीं करता है भगवान का। कितनी भगवान ने कृपा की है, लेकिन हाथ जोड़ के रोज धन्यवाद करना चाहिए भगवान का। आपका बड़ा शुक्र है भगवान, आपका धन्यवाद है, आपकी कृपा है, हाथ जोड़ के करना चाहिए। करें, देवताओं ने नहीं किया तो अमृत ने अपना काम नहीं दिखाया। देवता मर रहे थे, अमृत कीने पीने के बाद सबने भगवान को कहा, भगवान आपके बगैर कौन रक्षक है हमारा, हम आपके शरण में। भगवान प्रकट हो गए, अमृत ने काम दिखाया और देवताओं को चुन चुन कर, देवता असुरों को चुन चुन कर मारने लगे। बलि महाराज तो मर ही चुके थे। अब तब ब्रह्मा जी ने कहा, देखो देवताओं आपको अमृत मिल गया, अब आप दैत्यों के वंश का विनाश मत करो, इनको भी जीने का अधिकार है, छोड़ो युद्ध बंद करो। बलि महाराज मर चुके थे, उनके गुरु भृगुवंशी ब्राह्मणियों के पास संजीवनी विद्या थी, उन्होंने उस विद्या से उसको जीवित कर दिया। बलि महाराज ब्राह्मणों का प्रेमी भक्त बन गया। ब्राह्मणों का महाराज आपको हम एक यज्ञ कराते हैं, इसका नाम है विश्वजीत यज्ञ, और ये महान यज्ञ किया, यज्ञ पूर्ण हुआ तो यज्ञ के अंदर से एक रथ निकला और धनुष बाण निकला, तरकश निकला, कभी तीर जिसके समाप्त नहीं होते ऐसे बाण, अक्षत तरकश निकला। प्रहलाद महाराज प्रकट हुए, बलि महाराज के दादा हैं, उन्होंने उनको कमल की नर मुरझाने वाली माला पहना दी। अब बलि महाराज विश्वजीत यज्ञ करने के बाद सेना लेकर इंद्र के ऊपर आक्रमण किया। स्वर्ग का इतना सुंदर वर्णन है, स्वर्ग इतना अच्छा लगा, और अंदर से इंद्र ने देखा, अरे समुद्र सेना की असुरों की आ रही है। अपने गुरु बृहस्पति से पूछा क्या करना चाहिए, बोला इस वक्त असुरों से लड़ोगे तो आप जीतोगे नहीं, उनके ऊपर ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, विश्वजीत यज्ञ का इनके पास रथ है, इसलिए आप भाग जाओ यहां से, अदृश्य हो जाओ। देवता लोग अदृश्य हो गए, बलि महाराज इंद्र के आसन के ऊपर बैठ गए, इंद्र बन गया बिना मेहनत के। अब भृगुवंशी ब्राह्मण कहते हैं, महाराज आप इंद्र आसन के ऊपर बैठे हैं लेकिन अवैध बैठे हैं, हम आपसे एक ऐसा यज्ञ कराएंगे, 100 यज्ञ अश्वमेध कराएंगे, तब आप इंद्र बनने के अधिकारी बन जाओगे। क्योंकि जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है उसको सत्कृतु बोलते हैं, और वो इंद्र बनने के अधिकारी होता है, उसका इंद्र बनने के लिए जरूरत पूरी हो गई, बने न बने और बात है, लेकिन इंद्र के लिए वो अप्लाई कर सकता है। 99 यज्ञ पूरे हुए और ये यज्ञ कहां हो रहा था? ये यज्ञ हो रहा था नर्मदा नदी के किनारे पे, जहां आज गुजरात में बरूच है, भृगु कच्छ उसका पुराना नाम है, भृगु कच्छ, वो नाम बिगड़ के बरूच हो गया, वहां ये यज्ञ हो रहा था। अब देवताओं की माता आदित्य अपने घर में बैठी है, कश्यप को कहती है, कश्यप जी बाहर से आए, पूछा देवी आपके चेहरे के ऊपर उदासी दिख रही है, आप चिंता में क्यों हैं? क्यों घर में आपने संध्या वंदन नहीं किया, दीप नहीं जलाया, अगरबत्ती नहीं की, भगवान की पूजा नहीं की, कोई अतिथि आया उसको भोजन नहीं खिलाया, या आपका संतान तो ठीक है? आदित्य कहती है, आपकी पत्नियों घर में पूजा पाठ होता है, संध्या वंदन होता है, देव अर्चन होता है, अतिथि की सेवा होती है, लेकिन मेरे पुत्रों को देखे बहुत समय हो गया, इंद्रासन खाली पड़ा है, मेरे देवता पुत्र कहां है पता नहीं है। कश्यप कहता है, ब्रह्मा जी ने मुझे पयो व्रत बताया था, दूध पीने का व्रत, 12 दिन केवल व्रत करना होता है और भगवान प्रसन्न होकर आपकी इच्छा पूरी करेगा। आदित्य माता ने 12 दिन का पयो व्रत किया और भगवान प्रकट होकर कहने लगे, माँ आदिति तुम क्यों व्रत कर रही हो मैं जानती हूं, जानता हूं, लेकिन इस वक्त मैं धर्म के ऊपर चलने वाले और ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में बलि को अपने रास्ते से हटा नहीं सकता, अन्याय मैं नहीं करूंगा, लेकिन आपने प्रेम से इतनी मेरी पूजा की है, भक्ति की है, आपको भी निराश तो नहीं करूंगा, इसलिए मैं आपके घर में आपका पुत्र बन के आऊंगा, तो फिर मैं इंद्र का छोटा भाई बन जाऊंगा, अपने भाई की सहायता करने में कोई मेरे ऊपर आरोप नहीं लगेगा। अब कश्यप के अंदर तुम मेरा ध्यान करो। आदित्य ने कश्यप के अंदर भगवान का ध्यान किया और भगवान वामन देव के रूप में आदित्य और कश्यप के यहां छोटे ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। सारे देवता आए, सूर्य देव ने गायत्री मंत्र दिया, माता पार्वती ने भिक्षा लेने का पात्र दिया, पृथ्वी ने मृग छाला दी, छाता दिया वरुण देव ने, और पिताजी ने जनेऊ देके मेखला दी, ऐसे सब ने उपहार दिया और ये छोटा सा वामन देव अब चला है जहां बलि का यज्ञ हो रहा है। बलि के यज्ञ में वामन देव को आता देखकर जैसे अभी सूर्य हुआ है इतना प्रकाश होने लगा, सब उठ के खड़े हो गए, वामन देव का स्वागत किया। बलि महाराज ने कहा हमारे यज्ञ के 100 यज्ञ, ये आखिरी यज्ञ हो रहा है, इसकी पूर्णाहुति के समय आप जैसा ब्राह्मण आया है हमारा तो कुल पवित्र हो गया। आप बिठा के बलि महाराज ने उनका चरण धोया, चरण धोके वो जल अपने सर पे लगाया। कितना बड़ा भाग है बलि का, ये गंगा उसी भगवान वामन का चरण धोके नीचे उतरती है, पहले ब्रह्मा जी के करमंडल में जाती है, फिर शंकर की जटाओं में जाती है, फिर धरती पे आती है, तब भी उस गंगा जल का हम सम्मान करते हैं, ये भी तो भगवान का चरण धोके आ रही है, लेकिन वो चरण साक्षात अपने हाथ से बलि महाराज ने धोया है और उस चरणों का जल अपने सर के ऊपर रखा है। ऐसा सौभाग्य एक तो केवट को मिला था जिसने राम जी के चरण धुलाए थे, और दूसरा सौभाग्य इस बलि महाराज को मिला है। दूसरों को एक चेतना महाप्रभु के चरणों का जल एक एक भक्त ने पिया था, काला ने, उसने 3 बार भगवान के चरणों का जल पिया था। ऐसे थोड़े ही उदाहरण है। बलि महाराज कहते हैं ब्राह्मण आप यहां आए हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। अब बलि महाराज के सामने वामन देव कहते हैं आपका कुल कितना महान है, आपका दादा प्रहलाद के लिए भगवान अवतार लेकर आए, आपके पिता विरोचन ने अपनी जीवन अपनी आयु ब्राह्मणों को दान दे दी, आपके दादा हिरण्यकशिपु इतने वीर थे कि भगवान विष्णु उनसे छुप के सबके हृदय में जाके बैठ गए थे। ऐसे भगवान वामन देव बलि महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों? बोला कहीं मांगने जाओ तो सामने वाले की प्रशंसा करनी ना चाहिए, नहीं तो कुछ देगा नहीं। तो प्रशंसा करके पूरी किया तो बलि महाराज ने कहा मांग लो ब्राह्मण, क्या चाहिए? धरती चाहिए, सोना चाहिए, गाय चाहिए, विवाह करना है, कन्या चाहिए। बलि के दरवाजे पे एक बार मांगने के बाद और कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बलिदानियों में ऐसा है कि हमारी भाषा में शब्द आ गया बलिदान, हम अपनी भाषा में कहते हैं बलिदान देना है, ये दान ऐसा किसी ने नहीं किया, बलि महाराज ने दान किया, हमारी भाषा में शब्द आ गया बलिदान, बलि जैसा दान किया, अपने आप को अर्पण कर दिया। तो बलि महाराज कहते हैं मांग लो, वामन देव कहते हैं देना ही है तो मेरे पांव से 3 मेरे पांव के बराबर जमीन मेरे को चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अरे बड़ी बड़ी पंडित जैसी बातें कर रही है, मांगना नहीं आता है? वामन देव कहते हैं बड़े बड़े राजा महाराजों को पूरी पृथ्वी मिली लेकिन पेट नहीं भरा, ब्राह्मण को संतुष्टि होना चाहिए, जरूरत से ज्यादा नहीं मांगना चाहिए, कोई बात नहीं ले लो। बोला संकल्प करो। बलि महाराज संकल्प करने के लिए पानी हाथ में लिया, शुक्राचार्य उठ के खड़े हो गए, गुरुदेव का बलि ये विष्णु है, ये वामन देव विष्णु है, ये 3 कदम में सारी संसार ले लेगा, पृथ्वी ले लेगा, 3 स्वर्ग ले लेगा, आप इसको दे नहीं पाओगे, ना कर दो, तुमने अभी तक ओम बोला ही नहीं है, तुम जो अपने वचन से मुकर जाओ। वैसे गुरु का धर्म बता रहा है, शुक्राचार्य अपने गुरु का सही दायित्व निभा रहे थे। गुरु का काम है शिष्य को भगवान दिखाना, और ये कह रहा था बलि ये भगवान है, दिखा रहा था कि नहीं दिखा रहा था, भगवान का परिचय करा रहा था, लेकिन भगवान को दो कुछ मत ये कह रहा था, मुकर जाओ। प्राण संकट में हो तो झूठ बोला जा सकता है, विवाह शादी में गाली देके झूठ बोला जा सकता है, ऐसे आपने ओम नहीं कहा है ना कर दो। बलि महाराज ने कहा मैंने वचन किया है। पृथ्वी कहती है झूठे का भार मैं नहीं उठा सकती, मेरे को नरक में जाना पड़े, नाग फांस में बंधना पड़े, या मुझे सब कुछ छिन जाए, लेकिन मैं अपने वचन से अब नहीं हटू। जो ये भगवान भी है तो मेरे पास मांगने आए हैं, मैं इसको दूंगा जरूर। बलि महाराज अपने वचन पे सत्य खड़े रहे। भगवान वामन देव जो छोटे थे बड़े होने लगे, एक पांव में धरती को नाप लिया, दूसरे पांव में स्वर्ग को नाप लिया, और ब्रह्मलोक से ऊपर पर्दे को छेदन कर दिया, और कारण सागर का जल भगवान के चरण को धोया, और वो जरण नीचे देवलोक में द्रुलोक में गंगा के रूप में गिरा, और उसको भागीरथ धरती के ऊपर लाए। अब बलि महाराज फिर छोटे बन के कहते हैं बड़े दानी हो रहे थे, तीसरा पांव कहां रखूं बोलो, बड़े दानी हो रहे थे, तीसरा पांव कहां रखूं। बलि महाराज कहते हैं मेरे बाहुबल से धरती को जीता था, मेरे योग से, मेरे यज्ञ से, मेरे दान तप से स्वर्ग को जीता था, लेकिन जीतने वाला मैं तो अभी बैठा हूं ना, ये तीसरा पैर मेरे सर के ऊपर रखो, ये मेरा सर खाली पड़ा है, मैं अपने आप को अर्पण करता हूं। दान देने वाले को अहंकार होता है मैंने दान दिया, लेकिन बलि महाराज कहते हैं मैं अपने आप को अर्पण कर रहा हूं। आत्मनिवेदन भक्ति का उदाहरण है बलि महाराज, मैं अपने आप को अर्पण करता हूं। उस वक्त पत्नी विंध्यावली आई, कहा कि महाराज ये शरीर भी आपका कहां है। प्रहलाद महाराज प्रकट हो गए। प्रहलाद महाराज ने कहा वामन देव हम असुर लोग आपकी संपत्ति को अपनी मान के मूर्खता करते हैं, अच्छा हुआ आपने ले लिया, हमारे अहंकार को मिटा दिया। बलि महाराज को भगवान वामन देव ने गरुड़ को कहा इसको वर्ण फांस में बांध दो, वो बंध गया, बलि महाराज बंधा हुआ है। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कहा ऐसी परीक्षा भगवान मत लीजिए, बलि ने सब कुछ आपको दिया, अभी तक क्यों बांध के रखा है। भगवान मुस्कुराए कि बलि परीक्षा में पास हो गए। अब बलि महाराज तुमको इंद्र तो मैं बनाऊंगा आने वाले मन्वंतर में, अभी आपके लिए मैंने नीचे सूतर लोक बनाया है जो स्वर्ग से ज्यादा सुंदर है, और मैं आपके वहां दरबान बन के आपके चौकीदार बन के खड़ा हो जाऊंगा, आप मेरा दर्शन करते रहना, आपने मुझे सब कुछ दिया तो मैं अपने आप को आपको दे देता हूं। बलि महाराज के सूतर लोक में चले गए, वामन देव वहां चले गए। लक्ष्मी कहती है पति देव कब गए हैं, अवतार लेके वापस नहीं लौटे, चली गई सूतर लोक में ब्राह्मणी बन के। बलि महाराज को कहा दान दीजिए, बोला जो मांगो मैया, बोला संकल्प कीजिए, बोला संकल्प तो पहले भी किया था आज भी करता हूं, बोला ये मेरा पति है यार आपने चौकीदार बना दिया, ये वापस दो, वापस वैकुंठ ले जाऊंगी। तो बलि महाराज के यहाँ वामन देव का दूसरा नाम है उपेंद्र, उप का मतलब छोटा, इंद्र का छोटा भाई। इस प्रकार से वचन का पालन करते हुए बलि महाराज ने भगवान श्री वामन देव को प्रसन्न किया, इंद्र को अपना राज मिला। वामन देव अभी भी सूतल लोक में बलि महाराज रह रहे हैं, आने वाले मनवंतर में इंद्र बनेंगे। एक अध्याय में प्रियव्रत नाम का राजा स्नान करने नदी में गया, नदी में अंजलि में जल लिया, एक मछली आ गई, वापस फेंकी मछली, ने कहा मैं आपके शरण में आई हूं महाराज, मुझे वापस मत फेंको। घर में लाके बाल्टी में डाला, मछली बड़ी हो गई, बड़े से परात हो टांकी में डाला, टांकी भर गई, तालाब में डाला, तालाब भर गया, नदी में डाला, सेतु बन गई। प्रियव्रत कहता है आप सामान्य मछली नहीं हो, आप कौन हो, मेरे शरण में आए हो, मैं आपकी रक्षा कर नहीं पा रहा हूं। मछलब ने कहा ब्रह्मा जी को जमाई आएगी, प्रलय होगी, उस समय केवल ऋषियों का प्रकाश ही प्रकाश रहेगा, आप सब औषधियों का बीज लेकर एक नाव आएगी उसमें चढ़ना और मैं मच्छ रूप में आऊंगा, मेरे सर के ऊपर सोने का खूंटा लगा होगा, मेरे को वासुकी के साथ जोड़ना, मैं आपको प्रलय के सागर से बचाऊंगा। अचानक ब्रह्मा जी को जमाई आई, प्रलय हो गई, चारों ओर अंधकार हो गया, पानी पानी हो गया। ऋषियों ने कहा महाराज सत्यव्रत, महाराज सत्यव्रत आप सब औषधियां लीजिए, बीज लीजिए, नाव में बैठिए। तब तक मत्स्य अवतार सामने दिखाई दिया, उसके खूंटे में बांधा। प्रलय के काल में मत्स्य अवतार ने इसको उपदेश दिया महाराज को, वही महाराज इस मनवंतर में जिसमें हम जी रहे हैं विवस्वत मनु बने, जिसने मत्स्य पुराण में मत्स्य भगवान ने जो उपदेश दिया उसको मत्स्य पुराण कहते हैं। आठवां स्कंद पूरा होता है। नवे स्कंद में ईशानु कथा के 24 अध्याय, 12 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन है, 12 अध्यायों में चंद्र वंश का वर्णन। सूर्य वंश का वर्णन, सूर्य देव का पुत्र है विवस्वान मनु, विवस्वान सूर्य देव का नाम है, उसके बेटे का नाम है विवस्वत मनु, और ये विवस्वत मनु वो है जिसको भगवत गीता का ज्ञान भगवान के द्वारा मिला। ये 4 अध्याय भगवत गीता में श्लोक लिखा है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राहो मनुर इक्षो वाक्वे अब्रवीत। तो विवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए, उनसे सूर्य वंश चला, और ऐसे ऐसे प्रतापी पुत्र हुए कि एक पुत्र संतान ऐसा हुआ जिसके लिए भगवान का सुदर्शन चक्र रक्षा के लिए खड़ा हुआ, ये अम्बरीश महाराज की कथा है। ऐसे महान प्रतापी राजा हुए जो धरती के ऊपर गंगा को लाए, दिलीप, अंशुमान और भागीरथ, ये 3 महा सूर्यवंश के राजा हैं जो धरती के ऊपर गंगा को लाए। इस सूर्यवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, आगे चलकर एक महाराज अज हुए जिसके पुत्र दशरथ हुए, और दशरथ के घर में भगवान राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का प्रकट्य हुआ, और इस कुल में एक बड़े महान राजा निमी हुए, जिस निमी महाराज का नाम है विदेहराज। वो देही में नहीं रहना चाहते थे। निमी महाराज का पुरोहित वशिष्ठ जी देवताओं का यज्ञ कराने के लिए चले गए। निमी महाराज ने कहा जीवन के ऊपर भरोसा नहीं है, दूसरे ब्राह्मणों से यज्ञ करा लिया। वशिष्ठ जी नाराज होके कि मेरे यजमान ने दूसरे से यज्ञ क्यों कराया, तुम्हारा शरीर छूट जाए। निमी महाराज ने कहा हमारे पुरोहित हुए तो देवताओं का यज्ञ करने जाए, आपका शरीर छूट जाए। दोनों का शरीर छूट गया। वशिष्ठ जी का फिर दोबारा जन्म हुआ, और महाराज निमी के शरीर का मंथन किया गया, कहा मैं शरीर में नहीं रहूंगा, नाम हो गया विदेहराज। मंथन किया तो राजधानी का नाम हो गया मिथिला, और ये महाराज जनक के नाम से पहले प्रसिद्ध है। जनक आदमी का नाम नहीं है, जनक एक विदेहराज जनक। उनकी 22वीं पीढ़ी में माता सीता का पिता जनक हुआ जिसका नाम था कुशध्वज, और क्षीरध्वज उनके भाई का नाम कुशध्वज था। इनको भी विदेहराज कहता है, इसलिए सीता को भी विदेही कहते हैं। तो ये महाराज निमी इसके वंश में आगे चलकर महाराज जनक हुए, जिनके यहां सीता मां धरती से प्रकट हुई। तो ऐसे सूर्य वंश का वर्णन है। और चंद्रवंश शुरू होता है अत्रि ऋषि से, ब्रह्मा का पुत्र अत्रि, अत्रि का पुत्र चंद्र, और चंद्र का पुत्र बुध, और बुध का पुत्र पुरुर्वा, और पुरुर्वा का विवाह हुआ, शादी की उसने अप्सरा से। कौन सी अप्सरा? जो भगवान नर नारायण ने अपनी जान से निकाल के भेजी थी। क्या नाम था उसका? उर्वशी। उर्वशी से विवाह हुआ पुरुर्वा का, और उस उर्वशी की कथा लंबी है नहीं करके, हमको कृष्ण जन्म जल्दी करना है, उस कथा को यहां विराम देते हैं। उर्वशी और महाराज पुरुर्वा के 6 पुत्र हुए, उनमें से एक प्रसिद्ध ययाति हुआ। ययाति महाराज का विवाह हुआ शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से, और उसके साथ दासी मिली समृष्टा जो राजपुत्री थी, इनमें से इनको भी दोनों से पुत्र संतान उत्पन्न हुआ। एक दो मुख्य नाम आगे चले, एक यदु और एक पुरु। पुरु छोटा था, यदु बड़ा था। किसके पुत्र? ययाति के। यदु के वंश में आगे चलकर महाराज भरत हुए, जिसके नाम से अर्जुन को भरत कहा, भारत कहा जाता है भगवद गीता में। तीन भरत हमारे वैदिक सनातन धर्म में मशहूर है। एक रामचंद्र का भाई भरत, एक ऋषभदेव का पुत्र भरत, जिसके नाम से पृथ्वी का नाम भरत है, भारत वर्ष हुआ, और एक शकुंतला और दुष्यंत का बेटा भरत। ये ययाति के कुल में हुआ। और इस महाराज भरत 5 साल के शेर का मुंह खोलते थे, बहुत वीर थे। इसके इस कुल में आगे चलकर पांडव हुए, इसलिए अर्जुन को भारतवंशी कहा जाता है। और यदु के वंश में आगे चल के महाराज देवमीड हुए। देवमीड की 2 पत्नियां, एक क्षत्रिय पत्नी, उससे पुत्र उत्पन्न हुआ सूरसेन। एक वैश्य पत्नी, उससे पुत्र उत्पन्न हुआ पर्जन्य। सूरसेन के घर में वसुदेव का जन्म हुआ और पर्जन्य के घर में नंद, उपनंद, सुनंद, नंदन 5 भाइयों का जन्म हुआ। इस प्रकार से अब हम चंद्रवंश में वसुदेव, सूरसेन का पुत्र और नंद बाबा और 4 भाई पर्जन्य के पुत्र, ये दोनों ऊपर इनका दादा एक ही है, भाई है आपस में। और फिर लिखा है 9वें स्कंद में कि वसुदेव और देवकी के यहां 6 गर्भ तो कंस ने मारे, 7वें गर्भ में बलराम जी आए और फिर वो रोहिणी के गर्भ में चले गए, 8वें गर्भ में भगवान श्री कृष्ण का प्रकट हुआ। ये 9वां स्कंद पूरा होता है ऐसे। 10वें स्कंद शुरू होते ही परीक्षित महाराज कहते हैं, आपने सूर्य चंद्र वंश का इतना बड़ा वर्णन किया, लेकिन हमारे प्रिय भगवान श्री कृष्ण की कथा को विस्तार से बताओ। भगवान श्री कृष्ण हमारे पूर्वज पांडवों के तो सखा, मित्र और सितेशी थे, लेकिन मेरे भी रक्षक हैं, मेरी माँ के उदर में आए थे। मैं आप जैसा कथा सुनाने वाला सुखदेव महाराज मिल जाए तो ये कथा भव रोग की औषधि है, दवाई है, हमको ये पिलाइए। और सुखदेव महाराज प्रसन्न होकर कहते हैं, वासुदेव कथा पुनाति त्रियम, हरि कथा तीनों को पवित्र करती है, सुनाने वाले को, सुनने वाले को और आयोजन करने वाले को, तीनों को पवित्र करती है। और फिर बिना किसी भूमिका के सुखदेव महाराज कहते हैं, इस पृथ्वी के ऊपर आतिताई राजाओं ने इतना अधर्म फैला दिया कि पृथ्वी देवी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास चली गई। ब्रह्मा जी ने शंकर जी को साथ लिया और फिर इंद्र आदि देवताओं को, नारद आदि ऋषियों को साथ लिया, खीर सागर के ऊपर जाके प्रार्थना करने लगे कि भगवान धरती का भार उतारने के लिए आप अवतार लीजिए। और उस समय किसी को दिखाई नहीं दिया, ब्रह्मा के हृदय में भगवान ने संदेश दिया कि मैं पृथ्वी के दुख को जानता हूं। अब आप सब देवता यदुवंश में जाके अपनी पत्नियों के साथ श्री के प्रिय करने के लिए प्रकट हो जाओ, मैं समय आने के ऊपर वसुदेव और देवकी के यहां अवतार लूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान ने यह संदेश दिया है, पृथ्वी संतुष्ट होकर वापस आई और यहां वसुदेव का विवाह देवक महाराज की पुत्री देवकी के साथ हो रहा था। और विवाह के समय, विदाई के समय उग्रसेन महाराज का पुत्र कंस, जो एक कालनी में असुर है, उग्रसेन के घर में पैदा हुआ है। उग्रसेन की पत्नी पद्मावती विदर्भ देश की थी, इसी क्षेत्र की थी। विदर्भ देश की पद्मावती अपने यहां आई हुई थी मैके में। कालनेमी राक्षस ने उग्रसेन के रूप धारण करे और कंस के रूप में वो उनका पुत्र हुआ। कंस देवकी और वसुदेव को विदा करने के लिए रथ का सारथी बन के जा रहा था। देवताओं ने देखा कि हमारा प्यारा भगवान अवतार लेगा, लेकिन कंस इतना दयालु हो गया तो देर हो जाएगी। तो देवों ने आकाशवाणी की, ए मूर्ख कंस, तुम जिस देवकी को प्रेम के साथ विदा करने जा रहे हो ना, इसका आठवां संतान तेरा काल, ये नहीं का लड़का लड़की। कंस असुर बहन का प्रेम कपूर की तरह उड़ गया, बालों से पकड़ लिया, तलवार निकाल ली और देवकी को मारने के लिए तैयार हो गए। ये असुर लोग तब तक अच्छे होते हैं जब तक उनकी कामना के ऊपर, उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं होता। उनका अपना स्वार्थ आया तो सबको भूल जाते हैं। बहन को मारे और मार कब रहा है, अब तो मंगल सूत्र बंधा हुआ है, शुभ सुगन सब शुभ सुगन है, उसमें मार रहा है। देवकी न रोई न चिल्लाई न छोड़ने के लिए बोला, शांत खड़िए। लेकिन वसुदेव ने कहा पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, मेरा धर्म है। वसुदेव ने शाम दाम दंड भेद सब रीति से रक्षा करने के लिए प्रार्थना की, आखिर में वचन दिया कि इसके सारे संतान जिनसे आपको भय नहीं है आपको दे दूंगा, लेकिन जिससे भय है वो नहीं दूंगा। बड़ी संस्कृत की भाषा विलक्षण है। कंस ने कहा इसके सारे पुत्र जिनसे आपको भय है वो दे दूंगा, लेकिन जिससे भय है वो नहीं दूंगा। और वसुदेव का नाम है अनंक दुमदुमी। उसके जन्म के ऊपर देवताओं की नगारे अपने आप बजे थे, दुमदुमियां अपने आप बजी थी कि भगवान का पिता बनेगा। उसके बात के ऊपर कंस को विश्वास था। कंस ने छोड़ दिया, जाओ घर, और ये घर चले गए। पहला बच्चा हुआ, वसुदेव ले आया, कंस को कहा ले लो। कंस ने कहा इससे मुझे डर थोड़ी है, आठवें से डर है, इसको ले जाओ। वसुदेव ने कहा कंस क्रूर इतना दयालु कैसे हो गया, पता नहीं इसके ऊपर विश्वास तो नहीं करना चाहिए। वापस लौट रहा था, नारद जी आ गए और आके कंस को कहा अरे भोजराज महाराज, ये देवता बड़े चालाक हैं, मैं आ रहा हूं, वो सब आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, यदुवंश में आ रहे थे। ये विष्णु बहुत चालाक है, पहले और आठवें का पता नहीं लगता है, आपने छोड़ क्यों दिया बच्चे को, मार दो। अरे नारद कोई गलत काम करेगा, किसी के बच्चा मरवाएगा, नारद सच कह रहा है लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा। कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया और उसके बच्चे को उसके सामने पत्थर के ऊपर पटक के मार दिया। पांच और बच्चों को देवकी और वसुदेव ने जन्म दिया और उन पांच को मारा, ये छह बच्चे मार दिए कंस ने, पटक के मार दिए। इनको बोलते हैं षडगर्भ। ये कौन थे, ये कौन थे जिसको कंस ने मारा? कंस काल ने भी राक्षस था, मैंने आपको बताया, ये छह कंस के अपने पुत्र थे और उनको श्राप था कि अपने बाप के हाथों मारे जाओगे, इसलिए नारद ने जो कहा सच कहा कि तुम मारो, क्योंकि उसको भूल गया था। लेकिन नारद को तो याद था ये कौन थे, ये मरीची के पुत्र थे, देवता के, ब्रह्मा जी के ऊपर हंसे थे। ब्रह्मा जी ने कहा असुर बन जाओ, ये हिरण्याकश्यप के यहां बच्चे पैदा हुए, वहां भगवान की पूजा कर रहे थे, हिरण्याकश्यप की पूजा नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा तुम्हारा पिता मारेगा, वो षडगर्भ बने और कालनेमी ने अपने पुत्रों को मारा। द्वारका लीला में एक दिन श्री कृष्ण बलराम अपनी माता देवकी को प्रणाम करने गए। मां ने कहा बेटा आपने अपने गुरु का मरा हुआ पुत्र तो वापस लाया, हमारे छह छह पुत्र कंस ने मारे, हमने उसको दूध तक नहीं पिलाया, मैं उनको देखना चाहती हूं। कृष्ण बलराम ने कहा हां मैया। और कृष्ण बलराम सूतल लोक में बलि महाराज के पास गए, बलि महाराज ने स्वागत किया और तब कृष्ण बलराम को कहा कि क्या सेवा करूं, बोला मेरे छह भाई यहां हैं, मेरी मां इनको देखना चाहती है। सूतल लोक से उन छह असुर योनि में देवकी के बच्चों को भगवान श्री कृष्ण बलराम वापस लाए। मां देवकी अपने बच्चों को देखकर उनके स्तन में दूध आ गया, कृष्ण का प्रसाद पिलाया, वो वापस देवता बन के मरीचि के पुत्र बने। इतना बड़ा उनके जीवन के चक्कर पड़ा। और हमारे आचार्यगण लिखते हैं कि काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर, ये छह अवगुण हमारे जीवन में हैं। जब तक ये खत्म नहीं होंगे तब तक भगवान हमारे हृदय में प्रकट नहीं होंगे। कंस है भय और देवकी है भक्ति रूप। हमारी भक्ति करने से और संसार में काल के भय से अगर हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छोड़ देंगे तो हमारे हृदय में भगवान प्रकट हो जाएगा। अब सातवां गर्भ देवकी के उदर में बलराम जी आए, तब भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक में बैठे बैठे देवी भगवती को बुलाया, कहा हे अंबे, ये बलराम नित्य रोहिणी का पुत्र है, मेरा धाम है, मेरे लिए आसन बनाने के लिए गया है। भगवान आएगा तो आसन तो होना चाहिए ना, तो गर्भ के अंदर देवकी के आसन बनाने के लिए गया है, शेष है। ये रोहिणी का पुत्र है, इसको यहां से खींच के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर लो, भद्रे और मेरी छोटी बहन बनकर यशोदा के घर में पैदा होना। दो बातें भगवान ने कही, और देवी तुम ये काम करोगी तो भारतवर्ष में विंध्या पर्वत में तुम्हारी पूजा लोग करेंगे, अंबा के नाम से करेंगे, शारदा के नाम से करेंगे, वैष्णवी के नाम से करेंगे, अंबिका के नाम से करेंगे, ये देवी के जितने पीठ है उन सब का भगवान ने नाम लिया। सातवां गर्भ देवकी का देवी ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, रोहिणी गर्भवती थी, और वो मथुरा से घोड़ी के ऊपर अक्रूर जी उसको नंद भवन में छोड़ के आए थे, और मां रोहिणी को लगा कि मेरा गर्भ गिर रहा है, लेकिन फिर कहा नहीं, बच गया, और यहां देवकी का सातवां गर्भ गिर गया, और कर्मन सब ने कहा ये कंस ने काम किया होगा। उसके बाद भगवान अपि विश्व आत्मा, बोलो भक्तानाम अभयंकर, भगवान जो सबके हृदय में रहते हैं परमात्मा के रूप में, जो सबसे प्रेम करते हैं, उनका मुख्य काम क्या है, भक्तानाम अभयंकर, भक्तों को भय से मुक्त करते हैं। आविशेष अंश भागेना,
आविशेष अंश भागेना,
अकेले भगवान नहीं, सारे अवतारों को अपने अंदर मिलाकर पूर्ण रूप से, मना अनंक दुम दुबी, वसुदेव के मन में भगवान प्रकट हुए, कहां प्रकट हुए, मन में। फिर लिखा है वसुदेव के मन से देवरूपी देवकी के हृदय में भगवान स्थानांतर हुए, इसको बोलते हैं दीक्षा। गुरु अपने हृदय में भगवान को प्रकट करके शिष्य के कान के द्वारा उसके हृदय में स्थापित करता है, मानो वसुदेव ने देवकी को दीक्षा दे दी, अपने हृदय से भगवान को उसके हृदय में स्थापन कर लिया। ये कोई स्त्री पुरुष का बच्चा पैदा होता है ऐसा भगवान का प्रकट्य नहीं। और फिर वसुदेव भगवान मन में आया तो चमकने लगा, प्रकाश निकलने लगा। वसुदेव के बाद जब देवकी के हृदय में भगवान आए तो देवकी चमक रही थी, लेकिन जैसे आग के ऊपर राख आ जाए ऐसे वो कंस के भय से छुपा रखी थी। कंस आया, कंस ने कहा गर्भवती है, आठवां गर्भ आ गया, मेरे को मारने वाला आ गया, लेकिन स्त्री है, मेरे आश्रित है, गर्भवती है, इसको मारना ये तो बड़ा अपराध है। तो भगवान के आने के बाद कंस का मन भी बदल गया, मारा नहीं, कंस चला गया पश्चिम दिशा में, जैसे सूर्य अस्त होता है पश्चिम दिशा में तो पूर्व दिशा से चंद्रमा उगता है, सूर्य का प्रकाश उसमें जाता है, ऐसे वसुदेव से भगवान देवकी के हृदय में, जगत मंगलम देव रूप देवकी, जगत का मंगल करने के लिए भगवान वहां चले गए। अब वसुदेव और देवकी कंस के कारागृह में है, समय हो रहा है, लिखा है सातवां मनवंतर, सातवां मनवंतर 28वीं चतुर्युगी, द्वापर का अंतिम चरण, भाद्रपद का महीना, अंधेरी रात की अष्टमी की तिथि, बुध का वार, रोहिणी नक्षत्र, ये जब सब तैयार हुआ तो उस वक्त दिशाएं सब साफ हो गई। कहा अगर देव की पश्चिम दिशा है तो हम भगवान की मासी हो गई ना, वो हमारी बहन हो गई, हम भी दिशाएं हैं, तो हमारी बहन के घर में हमारा भांजा आने वाला है, मासी है, तो सुधर जाएं, बड़ी सुंदर बन गई। आकाश में तारे चमकने लगे, नदियां बरसात की मौसम में पानी गंदा होना चाहिए साफ हो गया, नदियों ने कहा जमुना भगवान की पटरानी बनेगी, हम भगवान की सालियां बन जाएंगी, तो भगवान आ रहे हैं हमारे बहनों ही, तो हमको सुंदर बनना चाहिए ना। पृथ्वी ने कहा हमारा पति आ रहा है, सब ऋतुओं के पुष्पों से सुसज्जित हो गई, ब्राह्मणों की अग्नि अपने आप जलने लगी बगैर जलाए के, चारों ओर से वातावरण शुद्ध हो गया, सारे देवता ब्रह्मा शंकर चंद्र इंद्र नारद कंस के कारागृह में प्रार्थना करने के लिए आए, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है गर्भ में है उसकी प्रार्थना करने के लिए आए कि भगवान आपने हमको वचन दिया था, आपका वचन सत्य है, आप आ गए हैं, हम बड़े प्रसन्न हैं, और आप नहीं आते तो आपके चरण कमलों की नौका बनाकर संसार से लोग कैसे पार जाते। तब पाद पोते न मात करते न, महात्मा लोग आपके चरणों की नौका बनाकर संसार सागर से पार हो जाते हैं, और जाने के बाद नौका छोड़ के जाते हैं ताकि दूसरे पार हो सके। ऐसे भगवान की बहुत सुंदर प्रार्थना देवताओं ने की है। फिर देवताओं ने कहा वसुदेव और देव की आपकी चिंता दूर हो गई, अब भगवान आपके घर में आने वाले हैं, और देवता वहां से विदा हुए। और समय बहुत सुंदर जब हो गया, रात के 12 बजने वाले हैं, उस वक्त अचानक वसुदेव ने देखा कि चार हाथों वाला अद्भुत बालक, चतुर्भुजम शंख चक्र पदम गदा हस्तम क्रीट मुकट वैजंती माला पहना हुआ चतुर्भुजम अद्भुत बालकम देखा। वसुदेव ने प्रणाम किया और बड़ी सुंदर प्रार्थना की कि भगवान आप तो वेदों से जानने में भी दुर्लभ हैं और हमारे यहाँ प्रकट हुए हैं। माता देवकी ने प्रार्थना करके कहा चतुर्भुज के रूप में नहीं, आप छोटे बालक बन जाओ। तब भगवान ने बोलना शुरू किया, भगवान ने कहा वसुदेव और देवकी तुम पहले प्रश्नी थे और शत्रुपा थे, तुमने बड़ी तपस्या करके मेरे जैसा पुत्र मांगा, मेरे जैसा कोई और होता नहीं है, इसलिए मैं 3 बार आपका पुत्र बना, पहले प्रश्नी गर्भा बना, फिर आप आदित्य और कश्यप बने, तब मैं आपके घर में वामन देव होकर आया, अब आपके घर में वसुदेव कृष्ण हूं। अगर आपको कंस से भय लगता है तो वसुदेव सूरसेन के पुत्र सूर्यवीर मेरे को यहां से उठा और ले चल नंद भवन में यशोदा के पास छोड़ के, वहां कन्या का जन्म हुआ है उसको लेकर आ जा। ये भगवान का जन्म, ये गीता का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, बोलिए जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुनः। ये सबसे मुख्य श्लोक है भगवद गीता का। भगवान कहते हैं मेरा अवतार सामान्य बच्चे की तरह नहीं होता है, मेरी लीलाएं आम आदमी की तरह नहीं होता है, इनके तत्व से जो जान लेता है वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। तो भगवान यहाँ चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और बोलना शुरू किया। ऐसे कोई बच्चा पैदा होता है क्या विदर्भ में के नर्सिंग होम में माता पिता को बोलेगा घर ले चलो, नहीं, ये भगवान का प्रकट्य हुआ। और वसुदेव ने इसके बाद क्या किया, इसको रोकते हैं यहां, अब नंद भवन में चलते हैं। नंद बाबा बीच का है, 2 बड़े भाई हैं 2 छोटे भाई हैं, उपनंद बड़ा भाई है। उन्होंने कहा कि हमारे पिता के बाद राजा हम नंद को बनाते हैं, क्योंकि ये ऐसा अद्भुत है, ऐसा अद्भुत है कि इसकी प्राण से प्यारी चीज भी देने के बाद जिसको देता है उससे द्वेष नहीं करता। अपने बेटे कृष्ण और बलराम को वसुदेव के पास भेज दिया और वापस भी नहीं आए, लेकिन वसुदेव से कभी नाराज नहीं हुए, इतने बड़े ये महान है। इसलिए इसको राजा बनाते हैं, हम इसके आगे पीछे रहेंगे जैसे उपेंद्र रहता है। भगवान है उपेंद्र, फिर भी इंद्र का छोटा भाई बन के रहता है। तो नंद बाबा का विवाह हुआ सुमुख गोप की बेटी यशोदा से। यशोदा का जन्म का नाम देवकी है, लेकिन वो सबको जश देती है, इसलिए उसका नाम यशोदा हो गया। कोई संतान नहीं है। पांच भाइयों को एक बहन है सुनंदा, कोई संतान नहीं है। एक दिन नंद बाबा सुबह सवेले जमुना से स्नान करके लौट रहे हैं, सवेले 4:30 ब्राह्मण अपने अपने घर के आंगन के बाहर दंतन कर रहे हैं। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को देखकर जूता उतारा, ब्राह्मणों को प्रणाम किया, हे ब्रजवासी ब्राह्मण, नंद बाबा का प्रणाम स्वीकार कीजिए। सब ब्राह्मणों को ने कहा पुत्रवान भवा नंद। नंद बाबा हंसने लगे कि इस उम्र में मेरे को पुत्र होगा, ऐसी आशीर्वाद ब्राह्मण कैसे दे रहे हो। ब्राह्मणों ने कहा कि जो आशीर्वाद सोच समझ के दी जाए वो पूरी हो या ना हो, लेकिन अपने आप भगवान की प्रेरणा से निकली है तो आपका इच्छा पूर्ण होगा। नंद बाबा अपने घर गए, नारायण शिला को, सालंग्राम शिला को स्नान कराया और बैठे। ब्राह्मण नहा धो के गए सांडिल्य ऋषि के पास। सांडिल्य ऋषि को कहा कि महाराज गुरुदेव, हमने आशीर्वाद सुबह दे दिया नंद बाबा को, अब ये सच्चा कैसे होगा। उसने बोला इतने ब्राह्मण अगर आशीर्वाद दें तो सच्चा क्यों नहीं होगा। यज्ञ एक अनुष्ठान करो गोपाल मंत्र का, 18 अक्षर गोपाल मंत्र का, 18 लाख का जप करो, यज्ञ कुंड बनाओ, ब्राह्मणों को खूब भोजन कराओ, दक्षिणा दो, नंद बाबा को कहो ये कार्य करे तो नंद के घर में निश्चित रूप से संतान होगा। ब्राह्मणों ने नंद बाबा को कहा, जमुना के किनारे बड़ा मंडप बना, सुंदर बड़ा, 18 अक्षर गोपाल मंत्र का जप हुआ, 18 लाख का जप हुआ, उसके बाद यज्ञ हुआ। और जब यज्ञ हो रहा था तो सबने आकाश के देखा कि नील रंग का प्रकाश नीचे आ रहा है, और नीचे आते आते वो छोटे बालक के रूप में होके और नंद बाबा के हृदय में प्रवेश कर गए। सबने ये देखा और नंद बाबा के हृदय से यशोदा के हृदय में स्थानांतर हुआ, और उसके बाद यशोदा गर्भवती हो गई। अब सबको आशा है। और एक दिन पूर्णमासी अवंती का नगरी से अपने साथ अपने बालक मधुमंगल को लेकर ब्रज में आई और कहा, नंद और यशोदा तुम्हारे घर में बालक होने वाला है। सबने कहा आपके मुंह में मिश्री, आप यहीं रहो, आपको कुटिया बना के देते हैं। अब नंद बाबा और यशोदा के घर में भी बालक होने वाला है। सुनंदा बुआ को बुलाया गया है, सुनंदा सज धज के आई है, घर में सारे प्रसव का सामान की तैयारी कर रही है। नंद बाबा सुबह पूजा कर रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। यशोदा कहती है, महर क्यों आपके आंखों से पतिदेव क्यों आंसू बह रहे हैं। बोला यशोदा लज्जा आ रही है, मैं आपकी गोद में नीला बिलू रंग का चमकता हुआ बच्चा दूध पीते हुए देख रहा हूं। यशोदा कहती है, लज्जा तो मुझे भी आती है, मैं आपकी गोद में आपकी दाढ़ी से खेलता हुआ नीला बच्चा देख रही हूं। दोनों को बोला ये हमको स्वप्न हुआ है। इतनी देर में सांडिल्य ऋषि से पूछा गया, गुरुदेव ऐसे हमको स्वप्न हुआ है, अब क्या करें। सांडिल्य ऋषि कहते हैं, आपका स्वप्न आज रात को 12 बजे तक सत्य हो जाएगा। तो नंद भवन में पहले से तैयारी हो रही थी बालक के जन्म की, और यहां प्रसव की तैयारियां हो रही थी, और जो देखने के लिए नर्स आई थी ना, वो यशोदा मैया के पेट को देख के कह रही है, यशोदा तुमने जुड़ू अकेला खाया था क्या, कबा डबल केला खाया क्या। बोला क्यों। बोला बच्चे दो हैं। बोला ऐसे कैसे। बोला हैं, अब यहां बच्चा होने वाला है ये कथा चल रही है। ऐसे नंद भवन में भी बच्चे की तैयारी हो रही थी। अब वसुदेव ने क्या किया, वसुदेव के हाथ में हथकड़ी थी, पांव में बेड़ियां थी। पांव में बेड़ियों का मतलब है दरवाजे तक जाके रोटी ले आ सकता था, बाहर नहीं जा सकता था। जैसे श्री कृष्ण को ऐसे गोद में उठाया, हाथ की हथकड़ी खुल गई, पांव की बेड़ी खुल गई। कृष्ण वाहक वसुदेव, जो भगवान को हृदय में उठाता है उसके सारे बंधन अपने आप खुल जाते हैं। भगवान को हृदय में धारण करोगे तो सब बंधन खुल जाएंगे। वसुदेव जी बाहर चले हैं तो महामाया ने सारे सिपाहियों को सुला दिया। दरवाजे अपने आप ऐसे खुले जैसे सूर्य उगते हुए अंधेरा भाग जाता है, कोई आवाज नहीं होता। बाहर वसुदेव बाहर पहुंच गए कारागृह से। आकाश में इंद्र ने कहा, पहले बादलों ने कहा, इसका नाम घनश्याम होगा। हमारे नाम को लोग याद करते हैं, घन कहते हैं बादल, बादल को। हम कई बार समुद्र को प्रार्थना की कि भगवान तुम्हारे अंदर सोते हैं, हमको दर्शन कराओ। बादल समुद्र को प्रार्थना करते हैं, भगवान तुम्हारे अंदर सोते हैं, हम दर्शन कराओ। समुद्र कहता है, पर उपकार करो, पहले हमारे पानी को मीठा बनाओ, बरसात में बरसाओ, तब तुमको भगवान का दर्शन कराएंगे। लेकिन आज तक नहीं कराया। आज तो हमारा ये सांवला सलोना श्याम सुंदर हमारे नाम से प्रसिद्ध होगा, अरे इसका स्नान भी नहीं हुआ है। चलो ऊपर से थोड़ी बूंदाबारी करके कृष्ण का स्नान करा देते हैं। तो ऊपर से हल्की सी बूंदाबारी होने लगी और कृष्ण का स्नान हो गया। तब इंद्र ने कहा, हमारे रक्षा के लिए आया है। बाहर सोए हुए लोग अगर मथुरा में वसुदेव को जाते देखेंगे तो कंस को खबर देंगे और संकट आ सकता है, इसलिए ऐसी बारिश होनी चाहिए, हाथी की सूंड जैसी बारिश की धार चलनी चाहिए कि आंखों के सामने की चीज दिखाई ना दे। मौसलाधार बारिश होने लग गई। अरे शेष नाग ने कहा, इंद्र को क्या हो गया, पागल हो गया, इतने छोटे बच्चे के ऊपर इतनी बारिश। शेष नाग पीछे से वसुदेव के ऊपर छाता बन गया। वसुदेव जमुना के किनारे आए तो जमुना ऐसी भयंकर बह रही है कि जैसे समुद्र में छोलियां उठ रही हैं। लेकिन सौरेर सूरवीर का पुत्र भगवान को हाथ में लिया हुआ निर्भय होकर जमुना के अंदर प्रवेश किया। जमुना नाक तक आई तब वसुदेव ने सर को सर के ऊपर बच्चे को बिठाया। सर के ऊपर बच्चे को तब रखा जब जमुना नाक तक आई, अपने मरने की परवाह नहीं की और कह दिया, कोई ले लो, कोई ले लो। एक गांव है जमुना पार, उसका नाम है कोयला गांव, जहां गोकुल के पास में कोयला गांव है, वहां वसुदेव ने कहा, कोई ले लो, कोई ले लो। तब भगवान ने अपना चरण बाहर निकाला, जमुना जी ने चरण को पखाला और जमुना जी नीचे बैठ गई। और जैसे हिंद महासागर ने भगवान रामचंद्र को रास्ता दिया था, ऐसे वसुदेव को रास्ता जमुना जी ने दे दिया। वहां नंद भवन में तो पहले से तैयारी हो रही थी, किसकी, बालक की, लेकिन वहां योग माया ने सबको सुला दिया। वसुदेव को किसी ने नहीं देखा। वसुदेव सीधा यशोदा के कक्ष में गया, अपने हाथ में लाए हुए बालक को वहां रखा, वहां एक बालकी थी उसको उठाया और लेके वापस आया। फिर भी जमुना ने रास्ता दे दिया कि भगवान का पिता है रास्ता। जा जेल के अंदर आ गए, अपने कारागर में पहुंचे, हथकड़ी अपने आप लग गई, पांव में बेड़ी लग गई, दरवाजे बंद हो गए, सब संतरी जाग गए, सिपाही जाग गए, बच्ची रोई। और ये समाचार कंस को पहुंचाया, रात के 2 बजे होंगे, 12 बजे जन्म हुआ, मथुरा गया, गोकुल गया, वापस आया। कंस की नींद खराब, सर के ऊपर मुकुट नहीं, बाल बिखरे हुए, 8वां बच्चा हो गया, रो रहा है, भागता हुआ तलवार हाथ में लेके कंस आया सीधा। देवकी के हाथ में बच्ची थी, देवकी ने कहा, मेरे बच्चे तो मैंने कंस को दे दी, ये तो यशोदा की बच्ची है। लोग कहेंगे अपने बच्चे की रक्षा के लिए पराई बच्ची का बलिदान दे लिया। आज देवकी कहती है, भैया कंस ये लड़की है, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी, इसको मत मारो, बड़ी होगी तो तेरे बेटे के साथ विवाह दूंगी, तेरे घर में भेज दूंगी। कंस ने नहीं सुना, उसके हाथ से जबरदस्ती लड़की को छीन लिया और पत्थर के ऊपर पटकना चाह रहा था। 8 भुजाओं में दुर्गा हो गई और ऊपर जाती हुई आकाश में कहती है, हे दुष्ट कंस, तेरे को मारने वाला पैदा हो गया। कंस डर गया, ये जो असुर लोग होने देवी देवताओं के तो बड़े भक्त होते हैं लेकिन भगवान के द्वेषी होते हैं। देवी की बात सुन के कंस वसुदेव और देवकी के चरणों में गिर के प्रार्थना करने लगा, मुझे क्षमा करो, ये देवताओं ने झूठ बोला था, अरे आठवां लड़का ही नहीं हुआ, मेरे द्वारा इतना बड़े अपराध होके आपके बच्चे मरवा दिए, मेरे को क्षमा कर दो, आपको मैं आजाद करता हूं, आप अपने घर जाओ। कंस सुधर गया, देवी को देखते ही सुधर गया, 2 घंटे के लिए सुधरा, घर जाके सोया और इसके सारे मंत्री आए, चाणूर आया, मुष्टिक आया और बकासुर आया, अघासुर आया, पूतना आई, सब जग आके बैठे। तो इसने कहा रात तो बालकी हुई थी, आकाश में चली गई। बोला महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ के बाकी किसी देवता की आपको कोई परवाह है? आपके बराबर कौन है बल में? जितने बच्चे 15 दिन में महीने में हुए हैं ना, पूरे ब्रज मंडल में सबको मरवा देते हैं, आप परवाह मत करो। और कंस ने चारों ओर से आदेश दे दिया, जहां कोई बच्चे का जन्म हुआ है सबको मार दो। दूसरे तरफ अब एक प्रश्न उठ सकता है कि वसुदेव ने सब बच्चों को वापस देने का जब वचन किया था तो अभी तक सब बच्चे दिए, ये क्यों नहीं दिया? ये बच्चे का जन्म हुआ जब चतुर्भुज में, तो वसुदेव ने सबसे पहले कहा कि सबसे प्रिय मेरी चीज है वो आज बच्चे के ऊपर मेरे को निछावर कर देनी चाहिए, मैं यहां से जब छूटूंगा तो गाय का दान करूंगा, 2 लाख गाय का दान करूंगा, लेकिन अब इसके ऊपर क्या मैं कुर्बान करूं, क्या किस चीज का बलिदान दूं? अरे मेरा वचन मुझको सबसे प्यारा है, आज मेरा वचन कृष्ण के ऊपर मैं निछावर करके जमुना में डाल देता हूं, मैं कोई कंस का नौकर नहीं हूं, मेरे को ये कह रहा है भगवान के ले चलो नंद भवन में, तो मैं इसकी बात मानू कि कंस की बात मानू? एक बार अकबर बीरबल के साथ जा रहा था, बाजार में बैंगन देखा, बीरबल को कहा बैंगन बहुत अच्छा है, बीरबल के महाराज सब्जियों में सबका राजा है, इसके ऊपर देखो मुकुट होता है, रंग देखो कितना अच्छा है, अच्छा ले चलो। ले गए घर, पकाया, अकबर ने खाया और पेट में बास हो गई हवा, अरे बीरबल बैंगन बहुत खराब है। बोला महाराज नाम ही बेगुण है, कहां से उसके अंदर गुण आए, उसमें कोई गुण नहीं है, बहुत खराब है। अकबर बोला कल बोला अच्छा है, आज बोल रहे हो खराब है। बोला महाराज मैं आपका मंत्री हूं, कोई बैंगन के बाप का दो बैंगन को आपने कहा अच्छा, मैंने कहा अच्छा, आपने कहा खराब, मैंने कहा खराब, कोई मैं बैंगन की बात मान लू कि आपकी बात मानू? तो भाई वसुदेव किसकी बात माने, भगवान की बात माने कि कंस की बात माने? तो अपना वचन बलिदान कर दिया, भगवान की आज्ञा का पालन किया वसुदेव ने। अब यहां नंद भवन में यशोदा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक लड़की और एक लड़का, लिखा है ऐसे, बालक गोविंद आख्या है, बालक को गोविंद कहते हैं, लड़की योग माया, उसको वसुदेव ले गया, ऐसे लिखा है शास्त्र में। जो बच्चा वसुदेव लाया था वो बच्चा यशोदा के बच्चे में मिलके दोनों एक हो गए। अब आपको बहुत रहस्य की कथा 5 मिनट में बताता हूं। वसुदेव और देवकी के यहां जो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए वो रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में, उनका नाम है वसे वसुदेव कृष्ण, ये हैं अवतार जिनके लिए ब्रह्मा जी पृथ्वी के साथ प्रार्थना करने गए थे, ये धरती का भार उतारने के लिए आए हैं। लेकिन जो यशोदा और नंद के घर में प्रकट हुए हैं बालक, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, जो ब्रह्मा जी के एक दिन में 7वें मन्वंतर की 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंतिम चरण में नेम से आते हैं, उनका ये नेम है। एक बार कृष्ण का अवतार हुआ ये बात नहीं है, ये ब्रह्मा जी के 50 साल पूरे हुए हैं, ये 7वां मन्वंतर चल रहा है, इसका कलयुग का पहला चरण चल रहा है, कई बार श्री कृष्ण स्वयं भगवान अवतार ले चुके हैं और वसुदेव और नंद के नंद और यशोदा के यहां रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म लेते हैं। तीसरे चरण उनका नाम है बिहारी, बिहारी नाम है उनका, बी से नाम आएगा। तो ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण काय के लिए प्रकट होते हैं, कल आपको हमने बताया था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण क्यों प्रकट होते हैं, कल आपको बताया था। भगवान अपने सारे परिकरों को साथ लेकर गोलोक धाम से अपने बड़े, जो भगवान को अपना बालक मानते हैं, माता पिता नंद यशोदा, बड़े गोप नंद उपनंद और पैरवी माता आदि सबको लेकर आते हैं। फिर अपने साथ खेलने के लिए अपने साथ सखा श्रीधामा सुधामा मधुमंगल स्तोक कृष्ण मंडली भद्र सबको लाते हैं और अपने साथ रास विहार करने के लिए अपने अंग से उत्पन्न राधा रानी का काया व्यू रूप में गोपी गण को लाते हैं, ललिता विशाखा तुंग विद्या उन सबको लाते हैं साथ में। और केवल 11 वर्ष तक वृंदावन के अंदर ब्रज में बड़ी प्रेम की मधुर लीलाएं करके गोकुल में 3.5 वर्ष तक हरे कृष्ण कुछ है क्या, ड्रामा है लीला है क्या, 3 साल 4 महीने गोकुल में कुमार अवस्था की बाल लीलाएं करके जो भगवान को अपना छोटा लाला बालक प्रेम करने वाला मानते हैं उनको सुख देते हैं। फिर 3 साल 4 महीने वृंदावन में आकर बछड़े चारने और गौचारण की लीला करके सखाओं को सुख देते हैं। फिर नंदगांव में जाकर 4.5-4 साल तक गोपियों के संग में गोवर्धन पर्वत धारण करने से लेकर रास विहार करके जो भगवान को अपना प्रेमी मानते हैं, माधुर्य रस से उपासना करते हैं, उनको आनंद देते हैं। ये कौन है, ये है स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो नंद और यशोदा के यहां। बोला 2 बच्चों के जन्म का कैसे माना जाए, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, पहले तो भगवान ने कहा मेरी छोटी बहन होके जन्म लेना, तो बड़ा भाई होगा तब छोटी बहन होगी ना। दूसरा, नंद बाबा ने जात कर्म संस्कार कराया, मतलब बच्चे का मां के साथ नाड़ा जुड़ा है उसको काटा, तो वसुदेव नाड़े के साथ तो बच्चा नहीं लाया होगा ना, इसका मतलब एक बालक का जन्म यशोदा के यहां हुआ। अब सुनंदा नंद की बहन बच्चे के रोने के ऊपर अंदर चली गई, जाके बच्चे को देखा कि लड़का है कि लड़की है, लड़का है, नाचती हुई बाहर आई, नंद बाबा को बधाई दिया कि आपके घर में बालक हुआ है, और नंद बाबा जैसे कपड़े में थे ऐसे जमुना में कूद के स्नान किया और फिर नंद के आनंद भायो जय कन्हैया लाल की,
नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की,
नंद के आनंद भायो जय कन्हैया लाल की।